मैं स्कूल की गाड़ी में सवार होकर छात्रावास वापस गया और अपनी जेब में वह खास स्वचालित पिस्तौल रखी जो मैंने इस दिन के लिए तैयार की थी। फिर मैंने अपने साहसिक परिधान पहने, अपना छद्म खंजर उठाया और शाही महल की ओर चल पड़ा ताकि उसके प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश कर सकूं। बहुत सारे दर्शक पहले ही इकट्ठा हो चुके थे, ज्यादातर छात्र और पार्टी में आए मेहमान। और ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था। एलन, एलन कुन, एलन सान, अनास्तासिया, मार्गरेट और इसाबेला ने चिंतित होकर मुझे पुकारा। खेल में इस समय अनास्तासिया अकेली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्गरेट और इसाबेला भी उसके साथ आ गईं। अच्छा, जब मुझे एहसास हुआ कि अनास्तासिया अलग थलग नहीं थी, तो मैं खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सका। क्या बात है, बेवकूफ। अरे नहीं, मैंने तो बस यही सोचा था कि अनास्तासिया सामा का उसके दोस्त अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। क्या आज तीसरी बार मैंने उसका हैरान चेहरा देखा, और इस बार उसका चेहरा लाल था। मार्गरेट और इसाबेला मुस्कुराते हुए अनास्तासिया को देख रही थी। तो फिर अनास्तासिया सामा, मैं तुम्हारे लिए जीतूंगा। ओह हाँ, और एक बात एलन, वह गवाह उस गुट से है जो मेरे परिवार का विरोधी है, रैमस्लेट। सावधान रहना। मैं जानता था, हालांकि मैं खेल से उस चाल को जानता हूं और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कोई समस्या नहीं है, मेरा नर्म पड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये कहकर मैं प्रशिक्षण क्षेत्र के केंद्र की ओर चल पड़ा। युवराज, पांचों बंदी लक्ष्य, एमी तथा वह व्यक्ति जो द्वंद्व युद्ध का गवाह बनेगा, पहले से ही वहां मौजूद थे। जैसी कि उम्मीद थी, क्राउन प्रिंस एंड कंपनी मुझे कम आंक रही थी, क्योंकि उन्होंने कोई कवच नहीं पहना था और उनके हाथों में जो हथियार थे वे शायद उधार के थे। क्या उन्होंने शूरवीरों से कोई अतिरिक्त हथियार उधार लिया था? मैं तुम्हें भाग न पाने का श्रेय दूंगा, लेकिन तुम जीत तो नहीं सकते है ना? मैं तुम्हें फिर भी छोड़ सकता हूँ। युवराज ने अपनी उबाऊ बातचीत शुरू की, लेकिन इतनी दूर तक आने के बाद मैं पहले ही एक साहसिक मोड में प्रवेश कर चुका हूँ। टीएल, संभवतः द्वंद्वयुद्ध के बाद उनकी साहसिक जीवन शैली। हार की संभावना को शून्य तक कम करने के लिए प्रतिद्वंद्वी को अपना धैर्य खोना होगा। इसीलिए मैंने पहले हुई बातचीत में उसे उत्तेजित कर दिया था और उसका धैर्य भंग कर दिया था। आह, फिर से तुम बहुत परेशान कर रहे हो। जानते हो क्या कहते हैं, कुत्ता जितना कमजोर होता है उतना ही ज्यादा भौंकता है। बस मेरे पास आओ, मैं तुम सबको बुरी तरह पीटूंगा। या तुम मुझे मना करने पर मजबूर कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं है। महाराज, तुम पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है, जानते हो। मेरे उकसावे पर आया युवराज तुरंत भड़क गया। बाकी पकड़े गए लोग भी मुझ पर झपटने को तैयार बैठे हैं। मैं एमी को देखकर मुस्कुराया, जो उनके पीछे हाथ जोड़े खड़ी थी और उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वह प्रार्थना कर रही हो। एमी का चेहरा तुरंत लाल हो गया, मानो उसने मेरे चेहरे के भाव देख लिए हों, और फिर उसके चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया। अब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, चलो युद्ध शुरू करते हैं। मैं आज यही भाग्य का नाश कर दूंगा। मैं क्राउन प्रिंस एंड कंपनी से दूर हट गया और अपना खंजर ऊपर उठा लिया। फिर अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट और एमी वॉन ब्राइस के बीच द्वंद्व शुरू होगा। रेफरी आदमी जोर से द्वंद्व युद्ध की शुरुआत की घोषणा करता है। लेडी अनास्तासिया के प्रतिनिधि एलन हैं और लेडी एमी के प्रतिनिधि कार्ल हेंस बार्टल वॉन सेंट्रारिन, क्लाउड जस्टिन डी वेस्टेडेल, ऑस्कर वॉन विमलेट, मार्कस वॉन बैंस, लियोनार्डो वॉन ड्यूक्स हैं। कुल मिलाकर पांच प्रतिनिधि हैं। लेडी अनास्तासिया के अनुरोध पर यह 1-5 की अनियमित प्रणाली होगी और हत्या के अलावा सभी कार्यों की अनुमति होगी। टीएल, क्या ही बचाव का रास्ता है, पूरी तरह से एलन के पक्ष में। रेफरी के इशारे पर मैं एक धुएं का पर्दा बनाता हूं और फिर छिपाव का इस्तेमाल करके छिपने के लिए मैं उन पांच लोगों के करीब जाता हूं जो एक स्थान पर जम गए थे और उन्हें करीब से इस दिन के लिए विकसित की गई विशेष रूप से बनाई गई गोलियां दिखाता हूं। वैसे ये स्वचालित पिस्तौल एक दबाने वाला यंत्र से सुसज्जित है और चूंकि यह पवन जादू द्वारा फायर किया जाता है, इसलिए इसकी ध्वनि बारूद का उपयोग करने वाली बंदूकों से बहुत अलग है। इसलिए एक पूर्व जापानी एमी ने कभी भी गोली लगने का सपना नहीं देखा होगा। और चूंकि इसमें विशेष रबर की गोलियां भरी हुई हैं, इसलिए वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर गोली न लग जाए। खैर, हो सकता है कि इससे एक या दो हड्डियां टूट जाएं। जब धुएं का पर्दा हटा तो लियोनार्डो और क्लाउड, जो रबर की गोलियों से घायल हो गए थे, लेटकर बुलबुले उड़ा रहे थे। मैंने लियोनार्डो और क्लाउड को, जो नजदीकी लड़ाई में अच्छे हैं, विशेष सावधानी से गोली मारी। यह एक स्वाभाविक परिणाम है। गो, ओह ओह, वह क्या था। और मार्कस, ऑस्कर और क्राउन प्रिंस भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से गिरने की स्थिति तक नहीं। मैंने अपनी जेब से चुपके से काली मिर्च की सामग्री से भरा एक पानी का गुब्बारा बनाया और उसे ऑस्कर के चेहरे पर फेंक दिया। पानी का गुब्बारा, जो ऑस्कर के चेहरे पर एक सुंदर साफ टक्कर मारता था, एक कर्कश ध्वनि के साथ फट गया और काली मिर्च के घटक वाले चमकदार तरल ने ऑस्कर के चेहरे पर निर्दयतापूर्वक हमला किया। गया, आंखें, मेरी आंखें। इसके बाद मैं ऑस्कर के पास गया, जो गिर पड़ा और मैंने अपनी गर्दन पर खंजर रख लिया। आओ, साक्षी बनो। आह, ओम, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो मैं धीरे धीरे उसकी गर्दन काट दूंगा। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं समझ गया। लियोनार्डो, क्लाउड, ऑस्कर, अक्षम। जब मैंने ये सुना तो मैं जल्दी से बाकी लोगों से दूर चला गया ताकि वे मुझ पर हमला न करें। एक मिनट से भी कम समय में वे तीनों बेहोश हो गए और क्राउन प्रिंस और मार्कस को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उनके पीछे खड़ी एमी की आंखों में भी अधीरता के भाव थे। संयोग से इन दोनों को आखिर में छोड़ने की एक वजह है। युवराज अगला राजा है और मार्कस दरबारी जादूगर का अगला मुखिया है और खेल में कहा गया था कि वह भावी प्रधानमंत्री है। मैं चाहता हूं कि ये लोग अपना मन बदलें और सभ्य बने। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे अंततः वही मूर्खता दोहराएंगे जिससे राज्य का विनाश होगा। दूसरी ओर क्लाउड एक पड़ोसी देश का राजकुमार है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। और अगर इस स्थिति में लियोनार्डो मुझसे हार गया तो नाइट कैप्टन के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी स्थिति संदेह में पड़ जाएगी, इसलिए उसे जाना होगा। ऑस्कर, भले ही वह मार्क्विस परिवार से है, क्या वह इन दोनों की तुलना में कम प्राथमिकता वाला नहीं है? तीन शत्रुओं की अपेक्षा दो शत्रु होना बेहतर है और जब तक वे सचेत हैं और मेरा उपदेश सुनते हैं तब तक यही बात मायने रखती है। जब मैंने फिर से धुआंधार पर्दा हटाया तो मैं छिपाव में छिप गया और क्राउन प्रिंस और मार्कस पर एक एक करके रबर की गोलियां दाग दी। गेट आंत, जब वे घुटने टेकते हैं तो मैं उनसे नम्र स्वर में बात करता हूँ। अब महाराज मार्कस सामा, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने घुटने टेकना कैसा लगता है जिसे आप अपने से नीचे समझते थे? यह तुम कमीने, क्या आपको लगता है कि आप इससे बच सकते हैं? मुफ्त में, अगर आप हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो आपका परिवार भी ऐसा ही करेगा। हम मार्कस सामा, चूंकि आप इस द्वंद्व युद्ध में हारने वाले हैं तो क्या आप मुझे अपनी हैसियत से धमका रहे हैं? क्या आप मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे थे क्योंकि आपको अभी हारने का डर था? क्या, लेकिन अब मैं ड्यूक ऑफ रैम्सलेट की बेटी अनास्तासिया सामा का प्रतिनिधि हूँ। मार्कस सामा के वर्तमान शब्द भी ड्यूक ऑफ रैम्सलेट की ओर निर्देशित हो रहे हैं। क्या आप ड्यूक ऑफ रैम्सलेट की हत्या की योजना बना रहे हैं? यू गो तसूक टील, बस का चा पता नहीं था कि इसका क्या अनुवाद करना है। मार्कस हताशा में अपने होंठ काटता है। सामान्य तौर पर क्या आपको नहीं लगता कि आप जानते हैं कि आपके दिल में कौन अधिक समझदार है? द्वितीय एमी, जब तक आप इस पर बहस नहीं कर सकते मुझे लगता है कि यह ऐसा ही है। इसके अलावा यदि उन्हें पता हो कि वे क्या कर रहे हैं तो यह और भी बुरा है। सिर्फ इसलिए कि आप उसे बचाना चाहते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना किसी सबूत के एक तरफा धारणाएं बना सकते हैं, समझ रहे हैं? कम से कम जहां तक मुझे पता है अनास्तासिया सामा एमी को धमकाने के बजाय उसे रोकने की स्थिति में थी। इसके अलावा यह एमी ही थी जो अनास्तासिया को हाथ उठाने के लिए उकसा रही थी, है ना? कभी नहीं एमी, ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा व्यक्ति जो तर्क की कीमत पर भावनाओं को प्राथमिकता देता है भविष्य का प्रधानमंत्री होगा। हम क्या आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या आप हमें इस तरह रंगीन चश्मे से आंकने जा रहे हैं और एक ऐसे राज्य का लक्ष्य बना रहे हैं जहां भविष्य में झूठे आरोप और भ्रष्टाचार प्रचलित होंगे? क्या, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मार्कस कुछ भी कहने में असमर्थ होकर बुदबुदाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग रैम्सलेट और अनास्तासिया सामा के ड्यूक से माफी मांगिए। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अगर आप जैसा गुस्सैल इंसान इस राज्य का भावी प्रधानमंत्री बना तो हम सब मर जाएंगे। इस पर विचार करो। मैं मार्कस के चेहरे पर जितनी जोर से हो सके लात मारता हूँ। गा, फिर जब मार्कस जमीन पर गिरा तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए, उसे ऊपर देखने को कहा और खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। गवाह मां मार्कस, लड़ने में असमर्थ, असंभव असंभव। युवराज की आंखें बड़ी हो गई मानो वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर जब वह किसी तरह वापस आ गया तो उसने मुझसे किसी ऐसी बात की शिकायत की जिसका मुझे कोई मतलब नहीं था। टील, शोर मचाना, संदिग्ध जादुई उपकरणों की शक्ति पर भरोसा मत करो। कायरतापूर्ण कार्य किए बिना तलवारों और जादुई शक्तियों के साथ खुलकर लड़ो। उफ्फट, महाराज आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पहला नियम जिस पर हम सहमत हुए थे वह यह है कि कुछ भी हो सकता है ना? और अगर मैं काय हूँ तो क्या महाराज और अन्य लोग 5-1 के लाभ के साथ जीतने की कोशिश करने में काय नहीं है? जब मैंने कहा कि 5-1 तो युवराज ने खेत से अपने होंठ काट लिए। इसके अलावा क्राउन प्रिंस जैसे शक्तिशाली पद पर रहते हुए अनास्तासिया को 5 नहीं बल्कि 6 लोगों से घेरकर उस पर लगे झूठे आरोपों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के बारे में क्या कहा जा सकता है? अनास्तासिया सामा आपकी मंगेतर थी और आपकी हैसियत के कारण वह आपके खिलाफ नहीं जा सकती थी। इसे कायरता न कहें तो और क्या कहें? वह तो, युवराज बुदबुदाता है, उसे यह एहसास होता है कि वह गलत था। वह थी अनास्तासिया सामा ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, है ना? ये सब बिना किसी सबूत के आरोप हैं। अगर आप ऐसा कहने जा रहे हैं तो इस बात का क्या कि आपने अनास्तासिया सामा को, जिसने आपके लिए इतनी सारी चीजें बनाई थी, उत्सव से एक दिन पहले आखिरी समय में बाहर निकाल दिया। इसके अलावा प्रदर्शनों की सामग्री और गुणवत्ता में इतना अंतर था कि यह स्पष्ट था कि इसमें कितना हिस्सा अनास्तासिया सामा का था, आप जानते हैं। वहौरत इमी के लिए, जब मैंने युवराज को डांटा तो उन्होंने ऊंची आवाज में अपनी बात कही। आह, फिर से नहीं, कृपया मुझे कोई भद्दा बहाना मत दो। अनास्तासिया सामा ने इमी सामा को परेशान नहीं किया, वह तो बस एक जायज शिकायत कर रही थी। और तो और, डचेस अनास्तासिया सामा ने बैरोनेस इमी सामा को उपदेश देने की जहमत उठाई। जब मैंने ये कहा तो क्राउन प्रिंस ने निराशा से मेरी ओर देखा। तुम्हें पता है क्या, अगर तुम अगले राजा ऐसे रहे तो राज्य नष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम आम लोग मारे जाएंगे। तुम्हें युवराज को पता होना चाहिए कि अनास्तासिया सामा से शादी करने का क्या मतलब होता है। चुप रहो, अगर आपने ड्यूक ऑफ रैम्सलेट का समर्थन ठुकरा दिया तो हमारे लिए गृहयुद्ध ही इंतजार कर रहा है। हालांकि यह ऐसा होने से रोकने के लिए एक समझौता था, फिर भी आप एक लड़की के लिए अपना सिर फोड़ते रहे। युवराज लाल हो गया और नीचे देखने लगा, फिर ऊपर देखा और मेरी ओर घूरने लगा, मानो उसने अपना मन बना लिया हो। चुप रहो, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या जानता है? एक शाही परिवार के रूप में, एक युवराज के रूप में, मुझसे हमेशा अपना काम करने की उम्मीद की जाती थी। किसी ने मुझे कभी नहीं देखा कि मैं कौन हूँ। उस महिला के साथ भी यही हुआ। मुझे हमेशा युवराज, अगला राजा वगैरह बनने के लिए मजबूर किया जाता है। अरे, क्या ऐसा है? ये कठिन था, मैंने उसे तीखा जवाब दिया। हालांकि क्राउन प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वे अपना तर्क देते रहे। लेकिन एमी अलग थी, उसने मुझे वैसे ही देखा जैसा मैं था, भले ही मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने मुझसे कहा कि मुझे जैसा मैं हूँ वैसा ही रहना ठीक है, मुझे जैसा मैं हूँ वैसा ही रहना ठीक है। वो मुझे देखकर मुस्कुराए। मुझे क्या पसंद है, मुझे कौन सा खाना पसंद है, मुझे कहाँ जाना पसंद है, मानो वो सब जानती हो। वो भी यही सोच रही थी, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा था। बिल्कुल सही, वो ही है, इसीलिए मैं समझ गया। एमी, जो युवराज की पृष्ठभूमि से परिचित है, ने उसी के अनुसार अभिनय किया है। यही कारण है कि वह एमी के प्यार में अंधा हो गया, जिसने उसे बिना शर्त अपना लिया। लेकिन जानते हो क्या, क्या यही वो चीज है जो तुम एक माँ से चाहती हो, एक प्रेमी से नहीं? ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अनास्तासिया ने खुद को कितना मारा है और तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, और फिर भी तुम इतने स्वार्थी और आत्मकेंद्रित हो, जैसे कोई छोटा बच्चा सोचता है कि वह कुछ अच्छा कह रहा है लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। चुप रहो, मैं, युवराज का चेहरा लाल हो गया और वह चिल्लाया। क्या हुआ, क्या इसने इतनी बुरी तरह से वार किया है कि तुम बहस भी नहीं कर सकते? चुप रहो, तुम क्या जानो जब तुम एक आम आदमी हो और तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक शाही परिवार में पैदा नहीं होना चाहता था। हम तो आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप एक आम आदमी के रूप में पैदा हुए होते, एक आम आदमी की तरह जीना, हम राजघरानों द्वारा संरक्षित और निर्देशित होना कितना आसान होगा, और आप उस महिला के साथ होते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। मैं भी इस गुस्से से भड़क गया। मुझे पता है कि मैंने अब तक कुछ बहुत ही अपमानजनक बातें कही हैं, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर मैंने वही बात कह दी। ये बकवास है, आम आदमी होना इतना आसान क्यों है? क्या 8 साल की उम्र से रोज काम किया जा सकता है? गंदगी और बदबू से भरा कठोर शारीरिक श्रम, और इससे आपको रोजाना सिर्फ 1000 सेंट मिलते हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि जब हम कुछ खुरदुरी सब्जियों, मुट्ठी भर सूखे मांस और थोड़ी सी उबली हुई सख्त न चबाने वाली रोटी खाकर भूखे मर रहे होते हैं तो हमें कैसा लगता है? इतने भोले मत बनो। उफ, चुप रहो, तुम नीच आम आदमी, चुप रहो, हमम, और अब तुम अपनी हैसियत को ढाल बनाकर मुझे आदेश देने वाले हो। उससे पहले, क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? जब मैं उससे यह बात कहता हूँ तो वह घृणा भरी निगाहों से मुझे घूरता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। आमतौर पर अगर तुम इतनी बुरी तरह से आम आदमी बनना चाहते हो तो इमी सामा के साथ भाग क्यों नहीं जाते? फिर तुम एक आम आदमी की तरह रह सकते हो, है ना? क्या ऐसा कुछ करो, ये कहते हुए क्राउन प्रिंस रो पड़े। जाहिर है वे इतनी दूर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वह इतना बिगड़ गया है कि यह घृणित है। मैंने गहरी सांस ली और चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो महाराज अनास्तासिया सामा से निपटेंगे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तभी युवराज का चेहरा लाल हो गया और वह चिल्लाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उफ, चुप रहो, तुम्हारे जैसा कोई, तुम्हारे जैसे किसी को? तब युवराज ने विशाल ज्वाला जादू का जाप किया। ये संभवतः चरम ज्वाला जादू है जिसका उपयोग क्राउन प्रिंस ने खेल के अंत में पूरे क्षेत्र को एक साथ विभाजित करने के लिए किया था। इससे मुझे खेल में बहुत मदद मिली है, लेकिन इस तरह का जादू ऐसी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर वह यहाँ इस तरह का जादू करेगा, तो जजों और दर्शकों को बहुत नुकसान होगा। लगता है क्राउन प्रिंस को जीत का इतना चस्का लग गया है कि वो इन बातों को भूल ही गए हैं। पहली बात तो ये कि मौजूदा स्तर पर क्राउन प्रिंस को अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह महाराज, वह जादू अभी भी महामहिम के लिए बहुत ज्यादा है। द्वंद्व युद्ध देख रहे शिक्षकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उनकी एक न सुनी। एमी को जिताने के लिए मैं करूंगा, नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं ही वह व्यक्ति था जो विषय से भटक गया और व्याख्यान दिया, लेकिन इसका उद्देश्य सबसे पहले आपसे रामस्लेट के ड्यूक से माफी मांगने के लिए कहना था। जैसे ही मैंने उसे इस बात को ध्यान में रखकर देखा, युवराज का ज्वाला जादू अपेक्षा के अनुरूप नियंत्रण से बाहर हो गया। उसकी महानता अनास्तासिया ने जल्दी से अपना बर्फ का जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इशारे से उसे रोक दिया। फिर मैंने बिना मंत्रोच्चार किए हवा का जादू चलाया और महामहिम का ज्वाला जादू आकाश में उड़ा दिया। ओह, भगवान का शुक्र है कि यह प्रशिक्षण मैदान बाहर है। और फिर युवराज अपनी जादुई शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण बेहोश हो गया। सभी न, मैंने अनास्तासिया की उलझन भरी आवाज सुनी, लेकिन उसका जवाब देने के बजाय मैंने अपना खंजर युवराज की गर्दन पर रख दिया और गवाह को घूरने लगा। महामहिम कार्ल हेन्ज लड़ने में असमर्थ हैं, इसलिए यह एलन की जीत है। जब मैंने एमी की तरफ झुककर मुस्कुराया, तो उसने मुझे एक व्यंग्यात्मक नजर से देखा और फिर घुटनों के बल बैठ गई। मैं पीछे मुड़ा और अनास्तासिया के पास गया, फिर घुटनों के बल बैठ गया। मैं ये जीत अनास्तासिया सामा को समर्पित करता हूँ। था थैंक यू, लेकिन उससे भी ज्यादा। अनास्तासिया ने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ युवराज की ओर देखा। कोई बात नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। महामहिम ने बस अपनी सारी जादुई शक्ति खर्च कर दी है, इसलिए उन्हें मौत का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जो जादुई लपटें बेकाबू हो गई थी, वे सब मेरे वायु जादू से ऊपर की ओर उड़ गईं, इसलिए उन्हें ज्यादा चोटें नहीं लगनी चाहिए। मुझे यकीन है कि थोड़ी देर सोने के बाद वे जाग जाएंगे और अपनी जादुई शक्ति वापस पा लेंगे। क्या ऐसा है? अनास्तासिया ने ये सुनकर राहत महसूस की। ऐसे समय में भी वह अपने राज्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन वह मूर्ख युवराज उस स्त्री के प्रेम में कैसे पड़ गया, जबकि उसकी मंगेतर इतनी अच्छी थी। आह, मैं समझ गया, क्योंकि वह मूर्ख है। लेकिन अब मैं जो कर सकता था उसका अंत हो जाएगा। अब जब मैंने युवराज को द्वंद्व युद्ध में हरा दिया है, तो ताकतवर सरदार मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मैं अपना आपा खो बैठा और उस पर भड़क उठा। मैं चाहता हूं कि वे कम से कम मुझे फांसी से तो माफ कर दें। तो फिर अनास्तासिया सामा, मैं अब चलता हूं। हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया मार्गरेट सामा और इसाबेला सामा। थोड़ा अफसोस हो रहा है, पर अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अरे एलन, जब मैंने अलविदा कहा तो मैं छात्रावास में अपने कमरे में वापस चला गया। जब मैं छात्रावास में वापस आया, तो मैंने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलकर घर चला गया, जहां मेरी माँ थी। और जब मैं घर पहुंचा, तो मैंने अपनी माँ को, जो मेरे लौटने का इंतजार कर रही थी, आज जो कुछ हुआ वह सब बताया। मैंने उसे बताया कि मैंने ड्यूक की बेटी का पक्ष लिया था, जिसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था और उसे एक द्वंद्व युद्ध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य था कि हारने पर उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। और मैंने द्वंद्व युद्ध में लड़ते हुए न केवल युवराज को, बल्कि एक पड़ोसी देश के राजकुमार और कुछ उच्च पदस्थ रईसों के उत्तराधिकारी को भी पीटा है। मुझे यकीन है कि मैंने अपनी माँ को दुखी कर दिया होगा, जो चाहती थी कि मैं स्कूल से स्नातक होकर अच्छी नौकरी पाऊं। मैंने यही सोचा था, लेकिन जब मेरी माँ ने मेरा अपराध स्वीकार किया तो उन्होंने कुछ अप्रत्याशित कहा। हाँ, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, ये बहुत अच्छा था। एक ऐसी लड़की की मदद करके जो बुरी स्थिति में थी, तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो। फिर उसने मुझे धीरे से गले लगा लिया। एलन, इससे पहले कि कुछ हो जाए, तुम्हें भाग जाना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी माँ तुम्हारी जगह ले लेगी। नहीं, मैंने यह अपने आप किया। मूर्ख मत बनो, जब तक तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो तुम्हारी माँ ठीक है। ठीक है। ओह माँ, जब मुझे ये बताया गया तो मैं कुछ कह नहीं पाया। हालांकि मैं अपनी माँ को बचाना चाहता था, पर आखिरकार मैंने उनकी बलि चढ़ा दी। अब आज सो जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाऊंगी जो तुम्हें बहुत दिनों बाद पहली बार पसंद आएगा। ठीक है, माँ के बिस्तर पर जाने के आग्रह पर मैं अपने कमरे में चला गया। फिर मैंने अपने नाइटवियर पहने और बिस्तर पर लेट गया। मेरा सिर घूम रहा था और मैं अपने विचारों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? क्या मैं आखिरकार अपनी माँ को नहीं बचा पाऊंगा? मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ ने दस्तक दी। मैं अंदर आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, माँ दरवाजे से अंदर आई और मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गई। मुझे बिस्तर पर एलन का चेहरा इस तरह देखे हुए कितना समय हो गया है। मैं अब उतना युवा नहीं रहा। मैं ऐसा शर्मिंदगी के कारण कह रहा हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ हमेशा सोचती थी कि एलन इतना प्रतिभाशाली क्यों है, जबकि वह उस आदमी और मेरी संतान है। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि तुम उसके बेटे हो, माँ ने गंभीरता से कहा। आखिरकार तुमने एक ऐसी लड़की की मदद की थी जिसे परेशान किया जा रहा था, है ना? तुम भी सचमुच उसके जैसी ही हो। क्या ऐसा है? मुझे यकीन है कि आपके मृत पिता को आप पर गर्व होता, एलन। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। मेरे पिता की मृत्यु मुझे याद भी नहीं आती, उससे भी पहले हो गई थी। मुझे कभी नहीं बताया गया कि क्यों, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ वैसा ही किया हो जैसा मैंने किया था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? तब तो तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें सजा मिली, चाहे राजा से या ड्यूक से, तो मैं शिकायत जरूर करूंगी। ओह माँ, यही कारण है एलन, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ये बहुत अच्छा था। इतना कहकर उसने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा। हालांकि मैं इतना बूढ़ा हो चुका था कि उस तरह से सहलाया नहीं जा सकता था, फिर भी मैं गहरी नींद में सो गया। और जब मैं अगले दिन उठा तो मेरा दिमाग बहुत साफ था। मुझे नहीं पता कि कल मैं इतना नकारात्मक और परेशान क्यों महसूस कर रहा था, लेकिन सोचने पर अब तक तो सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही है। अनास्तासिया की निंदा की घटना में हस्तक्षेप करके उसे निर्वासित होने से बचाएं। ऐसा करके मैंने गृहयुद्ध छिड़ने और एस्टोनियाई साम्राज्य के आक्रमण को रोका है। अब तक मैं अपने द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसार भाग्य परिदृश्य को नष्ट करने में सक्षम रहा हूँ। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मुझे फांसी दी जाएगी या नहीं, और चूंकि ड्यूक का परिवार अभी भी मुझ पर ऋणी है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि अगर मैं इसका सही उपयोग करूंगा तो मुझे फांसी नहीं दी जाएगी। आखिरकार कल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था और मैंने बहुत सारी अपमानजनक बातें कही थी, इसलिए मैं मानसिक रूप से कमजोर हो गया था। ये सोचकर मैं कमरे से बाहर निकलकर बैठक की ओर चल पड़ा। मेरी माँ ने मेरे लिए नाश्ता पहले ही तैयार कर रखा था। माँ, सुप्रभात। सुप्रभात एलन, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? हाँ ओम, कल के लिए धन्यवाद, आपका स्वागत है। इससे भी बड़ी बात यह है कि नाश्ता पहले से ही तैयार है, आपको पता है। हाँ, मैं कुर्सी पर बैठ गया और माँ का इंतजार करने लगा। फिर हम साथ में नाश्ता करने लगे। मुझे घर आए हुए बहुत समय हो गया है और आज की सुबह बहुत सुकून भरी है। मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, लेकिन मैं इन दिनों को जितना हो सके उतना संजोना चाहता हूँ। मैंने अपने दिल की गहराइयों से ऐसा सोचा। अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के बारे में सोचने के एक घंटे बाद एक संदेशवाहक मेरे घर आया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो बटलर जैसा दिखता था और उसने एक बहुत ही महंगी जैकेट पहन रखी थी। आप एलन सामा हैं, है ना? मेरा नाम सेबेस्टियन है, मैं ड्यूक ऑफ रैम्सलेट की सेवा में बटलर हूँ। हाँ वाह, वो एक बटलर है और उसका नाम भी सेबेस्टियन है। जरा सोचिए, क्या गेम में ऐसा कोई किरदार नहीं था? वह ऐसा पात्र नहीं था जो कहानी में पूरी तरह शामिल था, इसलिए उसके बारे में मेरी स्मृति धुंधली है। हमारे परिवार के मुखिया गेरहाद सामा आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप कृपया मेरे साथ चलेंगे? समझ गया, कृपया प्रतीक्षा करें मेरे बेटे, कृपया आश्वस्त रहें, एलन सामा मेरी लेडी के उपकारक हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आइए हम अपने परिवार रैम्सलेट के ड्यूकर्डम की शपथ लें। माँ, सब ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अनास्तासिया के माता पिता मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मेरी माँ ने कुछ और नहीं कहा। सबसे जरूरी बात यह देखना है कि मुझे यहाँ कितना सहयोग मिल सकता है। ऐसा करने के लिए मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि ड्यूक मुझे पसंद करें। मैंने अपनी वर्दी पहनी, अच्छे कपड़े पहने और फिर सेबेस्टियन के मार्गदर्शन में गाड़ी में सवार हो गया। मैं ड्यूक के अभिजात्य जिले में स्थित विशाल भवन में पहुंचा, जहां मुझे भवन का आंतरिक भाग दिखाया गया, जो दिखने में जितना भव्य था उतना ही भव्य भी था, और मुझे स्वागत कक्ष में सोफे पर बैठाया गया। नौकरानी ने एक कप चाय बनाई, जिसका मैंने एक घूंट लिया और खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, मैंने सारे संभावित जवाब सोच लिए हैं, और अगर फिर भी बात ना बने तो मैं सीवा के रास्ते भाग सकता हूँ, मेरे द्वारा प्रबंधन किया जा सकता है। इस बारे में सोचकर मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद एक बालों वाला सख्त गोरा गोरिल्ला मनुष्यों के लिए बनाया गया एक बहुत अच्छा सूट पहने हुए कमरे में आया। अरे नहीं, ये गलत है। जब मैंने गौर से देखा तो पता चला कि वह एक इंसान था। उसकी शानदार दाढ़ी, तराशे हुए चेहरे और शानदार शरीर को देखकर मैंने उसे गोरिल्ला समझ लिया था। और जैसे ही मैंने ऐसी महत्वहीन बात के बारे में सोचा, मेरा तनाव तुरंत कम हो गया। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। मैं घुटने टेक कर अपने स्वामी को धन्यवाद देता हूँ। मैं गेरहार्ड हूँ, रैम्सलेट के ड्यूकर्डम का प्रमुख। लगता है आपने मेरी बेटी का ध्यान रखा है, आइए बैठिए। हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम एलन है। जब मुझे अनुमति मिली तो मैंने अपना नाम बताया और सोफे पर बैठ गया। अब मुझे आज सुबह अचानक आपको फोन करने के लिए खेद है।
कोई समस्या नहीं, फिलहाल अनास्तासिया के व्यक्तित्व को देखते हुए शायद ये बेहतर होगा कि ज्यादा चापलूसी न की जाए।
हाँ, व्यापार के बारे में मत पूछो या अनावश्यक चापलूसी मत करो, है ना?
एलन के स्वर पर ड्यूक की प्रतिक्रिया।
जाहिर है मैं सही था,
ड्यूक की बातों का मैंने मौन उत्तर दिया।
मैं समझ गया, उस उम्र में ऐसा कुछ,
कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बेटी ने आप में रुचि ली,
ऐसा कहते हुए ड्यूक की अभिव्यक्ति शांत हो गई।
अच्छा, सबसे पहले मैंने सुना है कि आपने कल रात मेरी बेटी की ओर से क्राउन प्रिंस और प्रिंस क्लाउड के साथ द्वंद्व युद्ध लड़ा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
धन्यवाद एलन कुन।
हाँ, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है।
मुझे हैरानी हुई क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्यूक मुझे इतनी खुलकर धन्यवाद देंगे।
हालांकि ड्यूक ने प्रभावित नजरों से मेरी तरफ देखा।
वह कौन सी बात थी जिसने अब आपको प्रभावित किया?
अब क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ?
हाँ, जो भी आप चाहें।
मैं संक्षेप में उत्तर देता हूँ।
उमू, माफ करना, पर मुझे तुम्हारी जांच करनी थी। तुम सी रैंक के सबसे कम उम्र के साहसी हो जिसने गोबलिन डंगोन को पार किया है और गोबलिन और ऑक्स का भी वध किया है, और मेरी बेटी के अनुसार तुमने एक ब्लिजार्ड फीनिक्स को भी हरा दिया है।
हाँ, ये सही है। इसके अलावा मैंने सुना है कि आपने सामान्य स्कूल में एक कक्षा छोड़ दी थी और अकेले ही हाई स्कूल में प्रवेश के लिए पैसे बचाए थे।
हाँ, तो फिर तुमने ऐसे द्वंद्व युद्ध में प्रतिनिधि बनने का अनुरोध क्यों किया?
तुम इतने मूर्ख तो नहीं हो कि इसका मतलब न समझ सको, है ना?
निश्चित रूप से तुम मेरी बेटी चाहते थे, यही कारण तो नहीं है?
बेशक, यह एक ऐसा सवाल था जो आना ही था। मैंने उसे वही जवाब दिया जो मैंने तैयार किया था।
हाँ, मैं स्कूल से निकाले जाने के लिए तैयार थी, और अनास्तासिया सामा के बारे में मैं उनके ईमानदार प्रयास के रवैये का सम्मान करती हूँ।
बेशक, मैं समझती हूँ कि हमारी स्थितियाँ अलग हैं।
तो फिर क्यों, जब आपने हाई स्कूल में दाखिला लिया तो इसका मतलब है कि आपने वहां से स्नातक होने का सपना देखा था, है ना?
ड्यूक के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। शायद इस सवाल के पीछे उसका कोई छिपा हुआ मकसद नहीं है, बल्कि वह सचमुच जानना चाहता है क्योंकि उसे मेरी हरकतें समझ नहीं आ रही हैं।
ठीक है, ये सही है। आप शायद मेरी बात पर विश्वास न करें, लेकिन मैं अपनी माँ और मेरी देखभाल करने वाले लोगों की रक्षा करना चाहता था।
क्या? पहली बार ड्यूक ने अपनी भौहें हिलाई और मुझे संदेह भरी नजर से देखा।
मुझे नहीं पता कि आप कितना जानते हैं, लेकिन ये सभी के लिए स्पष्ट है कि उस द्वंद्व युद्ध में कोई न्याय नहीं है।
ये सही है, मैंने ये सब सुना है। मैंने इससे पहले कभी इतने भयानक द्वंद्व युद्ध के बारे में नहीं सुना।
ड्यूक ने सिर हिलाकर मेरी बात का उत्तर दिया।
लेकिन ऐसा द्वंद्व भी द्वंद्व ही है। अगर अनास्तासिया सामा ने खुद द्वंद्व लड़ा होता तो शायद वह हार जाती क्योंकि वह महामहिम को चोट नहीं पहुंचा पाती।
हाँ, मुझे यकीन है कि वह ऐसा करेगी, मेरी बेटी के व्यक्तित्व को देखते हुए।
उस स्थिति में अनास्तासिया सामा को उस अपराध के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता जो उसने किया ही नहीं था, क्योंकि दूसरे पक्ष ने मांग की थी कि अनास्तासिया सामा को महामहिम के पास जाने से मना किया जाए।
ऐसा हुआ होगा, ड्यूक ने अपना भाव बदले बिना सिर हिलाया।
हालांकि अगर ड्यूक की बेटी को इस तरह एक तरफा तरीके से खत्म कर दिया जाता है तो दूसरे कुलीन परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसके बाद क्राउन प्रिंस और दूसरे प्रिंस के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाएगा।
इतिहास पर नजर डालें तो यह संघर्ष बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें बहुत खून खराबा होगा और देश में अराजकता फैल जाएगी।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं,
लेकिन इसका आपकी माँ या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा से क्या संबंध है?
ड्यूक ने अपनी भौहों के बीच की झुर्रियों को गहरा करते हुए मुझसे एक प्रश्न पूछा।
हाल ही में एक समाचार पत्र में मैंने ईस्ट एम्पायर के बारे में कुछ चिंताजनक बातें देखी।
क्या तुमने क्या कहा?
तुम? बिल्कुल नहीं, मैं चुपचाप सिर हिलाता हूँ।
क्या ऐसा है, आपने इतना सोच लिया है?
मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं आपके मामले की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं आपकी माँ की सुरक्षा की भी गारंटी ले सकता हूँ, आप निश्चिंत रहिए।
धन्यवाद, मैंने कहा और गहरा प्रणाम किया।
चिंता मत करो, अब से ड्यूक ऑफ रैम्सलेट तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो कृपया हमसे संपर्क करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस प्रकार मैंने ड्यूक को धन्यवाद दिया और उनकी गाड़ी पर सवार होकर अपने माता पिता के घर वापस आ गया।
वैसे मैं अनास्तासिया से नहीं मिल पाया, उसने कहा कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पसंद नहीं करती।
अलविदा कहने का ये एक अजीब तरीका था और बदकिस्मती से इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती।
मुझे तो बस खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी किस्मत को बर्बाद कर दिया और फिर भी जिंदा बच गया।
ड्यूक द्वारा मुझे पूर्ण सहयोग देने का वादा करने के कुछ दिनों बाद सेबेस्टियन सान पुनः मेरे माता पिता के घर आए।
एलन सामा, काफी समय हो गया है, मैं यहाँ अपने परिवार के मुखिया की ओर से एक निमंत्रण देने आया हूँ।
हम आपको कल रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए कृपया अपनी माँ के साथ आइए। हमारा परिवार आपको लेने के लिए गाड़ी का इंतजाम करेगा। और चूंकि हम स्थिति को समझते हैं, इसलिए कृपया औपचारिक कपड़े न पहने और वैसे ही कपड़े पहनकर आएं जैसे आप आमतौर पर शहर में आते हैं। इसके अलावा आपको कोई स्मृति चिन्ह लाने की भी जरूरत नहीं है। समझा। इतना कहने के बाद सेबेस्टियन सान लिखित निमंत्रण छोड़कर घर चले गए। एलन, यहाँ कौन था? ड्यूक ऑफ रैम्सलेट का बटलर। मुझे कल शाम अपनी माँ के साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है। ओह, मैं क्या करूँ, मेरे पास ड्रेस नहीं है और एलन के पास तो सिर्फ यूनिफॉर्म है। माँ, सेबेस्टियन सान ने कहा कि हमें औपचारिक कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हमें शहर में घूमने के लिए सामान्य कपड़े ही पहनने चाहिए। उन्हें चिंता थी कि शायद मेरे पास उस तरह के कपड़े नहीं होंगे। उससे भी बढ़कर एक ड्यूक द्वारा आमंत्रित किया जाना बेतुका और अवास्तविक सा लगता है। ओह, ये सही है, मुझे उन्हें कल दोपहर के काम में अपनी अनुपस्थिति के बारे में बताना होगा। एलन ने भी कल के लिए कुछ योजना नहीं बनाई है ना? ये कहकर मेरी माँ घर से बाहर निकल गई। आज मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मुझे बताया गया था, मैं यहाँ साधारण कपड़ों में और खाली हाथ आया था, लेकिन फिर भी मुझे असहज महसूस हुआ। सेबेस्टियन सान हमें ड्यूक के विशाल भवन से होते हुए भोजन कक्ष में ले गए। वहां ड्यूक, अनास्तासिया और जिन्हें मैं अनास्तासिया की माँ और भाई मान रहा था, पहले से ही बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। नमस्ते एलन कुन, स्वागत है। और आप एलन कुन की माँ होंगी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं गेरहार्ड क्रेनेल वॉन रामस्लेट हूँ, रामस्लेट परिवार का मुखिया। आपकी बेटी को अक्सर आपका बेटा सहयोग और मदद देता है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। फिर ड्यूक ने स्वाभाविक रूप से मेरी माँ का हाथ पकड़ा और उसके पिछले हिस्से को चूमा, जैसा कि एक कुलीन व्यक्ति से अपेक्षित था। यह मेरी पत्नी एलिजाबेथ और मेरा बेटा फ्रेडरिक हैं। ऐसा लगता है कि यह डचेस और अगले ड्यूक हैं, जो अनास्तासिया की माँ और भाई भी हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। एलिजाबेथ सामा, फ्रेडरिक सामा, मेरा नाम एलन है, मैंने कहा और घुटनों के बल बैठ गया ताकि असभ्य न लगूं। मेरा नाम कैटरीना है, मैं एलन की माँ हूँ। आज मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जब मेरी माँ ने ये कहा तो उन्होंने अपनी स्कर्ट का किनारा फैलाया और थोड़ा झुककर प्रणाम किया। आज मैंने अपनी बेटी के उपकारकर्ता और उसकी माँ को यहाँ आमंत्रित किया है। इस बारे में इतना औपचारिक न बने। जब ड्यूक ने ऐसा कहा तो हमने शिष्टाचार बंद कर दिया। चलो अन्ना, एलन कुन यहाँ है, तुम्हें पता है। एलिजाबेथ सान ऐसा कहती है और अनास्तासिया को मेरे सामने लाती है। एलन, अनास्तासिया सामा, कुछ नहीं तुम, क्या यह अलविदा कहने का कोई तरीका नहीं था? अनास्तासिया ने मुझसे इतनी भावुकता से कहा जितनी मैंने उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने उसे नहीं देखा था और मुझे लगा था कि वह मुझसे नफरत करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ, मुझे ये जानकर राहत मिली कि वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, और मैं ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि यह भावुक अनास्तासिया कितनी प्यारी थी। क्या तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ, माफ कीजिए, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। एह आह, हाँ मैं भी, और आप जानते हैं मैं आभारी हूँ प्रतिनिधित्व के लिए। आपको इसकी जरूरत नहीं है और मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ओह, मैं अनास्तासिया की शक्ल देखकर थोड़ा हैरान हूँ, जिसे मैं स्कूल में नहीं देख पाता। एलन कुन, अन्ना बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में चिंतित है, तुम्हें पता है। घटना वाले दिन वह आधी रात को रोती हुई अपने पिता के कमरे में भाग गई थी। माँ, ऐसा नहीं है, और मैं रो भी नहीं रहा था। जब एलिजाबेथ सान मजाकिया अंदाज में ऐसा कहती है तो अनास्तासिया लाल चेहरे के साथ उसे नकार देती है। TL कवाई इक्वल्स ओमेगा इक्वल्स। ओह अन्ना, ये सही है। एलन, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम उसे अन्ना क्यों नहीं कहते? मुझे यकीन है कि उसे यह पसंद आएगा। एह क्या माँ, जैसा कि मैंने सोचा था, अनास्तासिया, जो अपनी उम्र के हिसाब से हंस रही है, ऐसी स्थिर अभिव्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक है। तो अन्ना सामा, उफ भगवान, तब जब आसपास कोई न हो, ठीक है। हाँ अन्ना सामा, फिर मैं अपनी माँ का परिचय ऐना से कराता हूँ, जो एकदम लाल हो रही है, और डिनर पार्टी शुरू हो जाती है। फिर ड्यूक सीधे मुद्दे पर आता है। अब मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आपको ये रिपोर्ट देना चाहूंगा कि यह पूरी घटना कैसे घटी। मैं ड्यूक की आंखों में सीधे देखता हूँ। सबसे पहले रैम्सलेट परिवार से माफी मांगना, जो द्वंद्वयुद्ध की एक शर्त के रूप में तय किया गया था। इस बात पर तय हुआ था कि महामहिम क्राउन प्रिंस और मिस एमी अगले सत्र में स्कूल के उद्घाटन समारोह के दौरान रैम्सलेट परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली अनास्तासिया से माफी मांगेंगे, क्योंकि ऐसा उस जगह पर करना उचित होगा जहां ऐसे लोग मौजूद हों जिन्होंने अपमान का दृश्य देखा हो। हाँ, और क्राउन प्रिंस और मेरी बेटी की सगाई आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई है। जैसी कि उम्मीद थी, उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मैं सगाई जारी नहीं रख पाऊंगा। ये कहकर ड्यूक ने सांस ली। खैर एलन, मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसके दोस्त बनो एलन।
हाँ, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने दोस्त शब्द इतनी जोर से कहा।
बिल्कुल, और अंत में आपके इलाज के बारे में, मैंने शाही परिवार से मंजूरी ले ली है कि एलन कुन और कतेरिना सान हमारे परिवार के संरक्षण में रहेंगे, इसलिए आपको स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा और न ही आपको सजा मिलेगी।
वास्तव में हाँ, ये सच है। अगर तुम चाहो तो स्नातक होने के बाद यहाँ काम कर सकते हो, या मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ सकता हूँ, लेकिन पहले ये सुनिश्चित करो कि तुम स्कूल में अपने समय का पूरा सदुपयोग करो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओह ड्यूक सामा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ और मैंने ड्यूक को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। जाहिर है अब मुझे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं स्कूल जाना जारी रख पाऊंगी।
एलन, मैं अगले साल फिर से आपकी देखभाल में रहूंगी, अनास्तासिया ने खुश होकर मुझसे कहा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी।
मैं भी आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ, मैं किसी तरह जवाब दे पाया, लेकिन उसकी मुस्कान जो मैंने पहली बार देखी थी वह बहुत आकर्षक थी।
मुझे खुशी है कि मैंने यह मुस्कान देखने के लिए इतनी मेहनत की,
मैं सचमुच ऐसा ही सोचता था। नए साल के लगभग 2 सप्ताह बाद अन्ना मेरे पास आई।
अरे एलन, मैं अल्टमेंट में नए खोजे गए डंगोन को चुनौती देने की सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
ओर्क्स के महान काल कोठरी में?
ठीक है, लेकिन आप कितनी गहराई तक जाना चाहते हैं?
महान काल कोठरी, तुम्हारा क्या मतलब है?
उफ, बिना सोचे समझे मैंने उसे जवाब दे दिया, तो ये हाल ही में पता चला। हालांकि इसे अनुचित तरीके से सुधारने का प्रयास करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मैंने आज्ञाकारी होकर इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया।
दरअसल बहुत समय पहले मुझे अल्मन जंगल की गहराई में एक अनदेखा तहखाना मिला था और मैंने उस पर विजय प्राप्त की थी।
हम, तुमने क्या कहा एलन, क्या गोबलिन डंगोन ही एकमात्र डंगोन नहीं था जिसे तुमने पार किया था?
क्योंकि भले ही वह एक अनदेखा कालकोठरी था, लेकिन सबसे निचले स्तर पर बॉस केवल ओक राजा था। वहां कोई जाल नहीं था और यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
जब अन्ना ने मुझे ये कहते सुना तो उसने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया।
सच में वे कहते हैं कि प्रतिभा और अन्य चीजों के बीच एक महीन रेखा होती है, लेकिन क्या आप भी उस समूह में थे?
ये तो बदतमीजी है, मैं कोई जीनियस नहीं हूं तो मैं उनके आसपास भी नहीं हो सकता। मेरे पिछले जीवन में, कॉलेज में, बहुत से लोग मुझसे कहीं बेहतर थे।
खैर, मैं इसे उच्च गति के चक्करों के साथ पार कर रहा हूँ, इसलिए यदि आप कम से कम खुद को बचा सकते हैं तो मैं संभवतः अन्ना सामा के साथ इसे जीत सकता हूँ, लेकिन आप क्या सोचते हैं?
रुको एलन, हाई स्पीड लैप क्या होता है?
एह, स्तर बढ़ाने के लिए मैं बस कालकोठरी को पार करता हूँ और फिर प्रवेश द्वार पर स्थानांतरित होता हूँ और दोहराता हूँ।
अन्ना फिर से माथे पर हाथ रख रही हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, जब उन्हें क्राउन प्रिंस की मंगेतर बनाया गया था तो वह बहुत खुश हुई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब उसके हाव भाव अब जैसे बदलते हैं तो यह ज्यादा आकर्षक लगता है। जब मैं उसे देख रहा था तो अन्ना मेरी आंखों में घूर रही थी।
या मैं महिलाओं से इतना अछूता नहीं हूं, इसलिए जब वे मुझे इतने सुंदर चेहरे से घूरती हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है।
नहीं, कोई बात नहीं, तुम तो तुम हो, तो क्या तुम इसका ध्यान रखोगे?
हाँ, खुशी से। और इसी के साथ अन्ना और मैं ऑक्स के महान कालकोठरी में खेलने चले गए।
टीएल कालकोठरी तिथि।
फिर काफी समय बाद मैं अल्टोमंट तक घोड़ागाड़ी से गया। इतनी लंबी दूरी के लिए घोड़ागाड़ी से जाना थोड़ा झंझट भरा होता है, अगर हम ब्यूटर से जाते तो इसमें कुछ घंटे लग जाते, लेकिन घोड़ागाड़ी से सफर करना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक पुराना एहसास होता है। और एक लंबी यात्रा के बाद हम मार्गरेट के पारिवारिक घर पहुंचे।
हाय एलन कुन, बहुत समय हो गया मुलाकात से।
मार्गरेट सामा, बहुत समय हो गया, मैं घुटने टेक कर प्रणाम करता हूँ।
कोई बात नहीं एलन कुन, तुम मेरे सहपाठी हो और तुम ही वो शूरवीर हो जिसने अन्ना सामा की जान बचाई थी।
मैं ऐसा नहीं हूँ।
ओह भगवान, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एलन कुन, जो स्कूल के 5 सबसे ताकतवर छात्रों को हराने में कामयाब रहा, अगर अन्ना सामा न होता तो मैं खुद उसे शूरवीर बना लेता।
अरे मार्गरेट, मुझे पता है, मुझे पता है। अन्ना सामा, मैं तुम्हारा कीमती नाइट कुन तुमसे नहीं छीनने वाली, मैं उस वेश्या जैसी नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट।
आह ठीक है, इसके अलावा एलन उस तरह का आदमी नहीं है।
एह हम, ये क्या अदला बदली है, शायद मैं यही चाह रहा हूँ।
नहीं, मैं नहीं चाह सकता, ड्यूक ने मुझे याद दिलाया कि मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ और अगर मैंने उस पर हाथ रखा तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी, रुकात्मक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से। खैर, इस अदला बदली के बाद मुझे मार्गरेट के घर में एक कमरा मिल गया और मेरी देखभाल भी होने लगी। और तो और, मेरे साथ एक नौकरानी भी आ गई। बेशक मैं आभारी हूँ, लेकिन अभिजात वर्ग के मकान अनावश्यक रूप से बड़े और आलीशान थे, और मेरे जैसे औसत नागरिक के लिए मैं ऐसी जगह पर असहज महसूस करता था। हाँ, मैंने नौकरानी के साथ कोई स्वप्निल रात नहीं बिताई, ठीक है। फिर अगले दिन मैं अन्ना, मार्गरेट और हमारी रक्षा कर रहे 5 शूरवीरों को लेकर ओर्क्स के महान कालकोठरी में पहुंचा। हमने औपचारिकताएं पूरी की और कालकोठरी में प्रवेश किया, लेकिन उस समय के विपरीत जब यह अज्ञात था, वहां बहुत सारे साहसी लोग चुनौती स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। तो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं आपकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना चाहता हूँ, इसलिए अगर कोई ओर्क दिखाई दे तो कृपया उनसे अकेले लड़ने की कोशिश करें। अगर यह खतरनाक लगे तो मैं तुरंत आपकी मदद करूंगा। 5 शूरवीरों को लगता है कि मैं एक संदिग्ध व्यक्ति हूं, लेकिन उन्होंने अपने स्वामी मार्गरेट के आदेशों का अक्षरशः पालन किया। तो फिर मैं इसे पहले करूंगा। इतना कहकर मैंने अपना निकोप तैयार किया और पीछे से निकले ओक पर गोली चला दी। एक जोरदार धमाके के साथ गोली ओक की आंखों के बीच लगी और वह गिर पड़ा और हिलना बंद कर दिया। हम क्या, अब वह क्या था? अन्ना और मार्गरेट ऐसा कहते हुए अवाक रह गईं। शूरवीर भी स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। हवा के जादू का प्रयोग करके मैंने लोहे की गोलियां उड़ा दी और उन्हें अंदर दाग दिया। यह इसमें सहायता करने वाला एक जादुई उपकरण है, मैंने इसे बनाया है। मैं समझ गया, जैसी कि एलन से उम्मीद थी, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। जब मैंने ऐसा कहा तो अन्ना आश्चर्यचकित अवस्था से वापस लौटी और ऐसा कहा, धन्यवाद। उसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। शूरवीरों ने मेरे निर्देशों का पालन किया और हम आसानी से आगे बढ़ पाए। इस तरह हमने जल्दी से ओक के कालकोठरी को पार कर लिया, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, और आसानी से निचले स्तर पर बॉस को हरा दिया। ठीक है, इसके साथ ही अब आपने ओक्स के महान कालकोठरी पर विजय प्राप्त कर ली है, बधाई हो। ओह, मुझे आधे रास्ते में एलन कुन पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन हाँ, धन्यवाद। इस प्रकार हमने जल्दी से ग्रेट डंगोन ऑफ ओक्स पर विजय प्राप्त कर ली और बाद में मेरे गिल्ड कार्ड में ग्रेट डंगोन ऑफ ओक्स विजेता की उपलब्धि को जोड़ दिया। लेखक का नोट, मुझे स्लिपसामा से एक बहुत ही अच्छी समीक्षा मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य किरदार बहुत पसंद करने लायक है। मुझे यकीन है कि नायक को इस तरह से वर्णित किए जाने पर बहुत खुशी होगी। आपकी शानदार समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैंने अन्ना को ओर्क्स के महान कालकोठरी में तेज गति से चक्कर लगवाए। अंत में वह बिना मेरी मदद के अकेले ही 100वें स्तर पर ओर्क राजा को हराने में कामयाब रही, इसलिए वह कम से कम 20वें स्तर तक पहुंच गई होगी। फिर जब अन्ना का स्तर बढ़ना बंद हो गया तो हमने ओर्क्स के महान कालकोठरी को तेज गति से पार करना छोड़ दिया और राजधानी लौट आए। उसके बाद दिन काफी शांत थे। मैंने एक संतोषजनक शीतकालीन अवकाश बिताया, कभी कभी योगिनी गांव जाकर उनसे शहद लेता था और अकेले विंड माउंटेन कालकोठरी में जाकर तेज गति से चक्कर लगाते हुए ब्लिजार्ड फीनिक्स के साथ खेलता था और ब्यूटर और आग्नेयास्त्रों को बेहतर बनाने के लिए शोध भी करता था। वैसे एल्फ गांव में वह विकृत व्यक्ति अभी भी वही था और जो चाहे कर रहा था, लेकिन चूंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और एल्फ संतुष्ट लग रहे थे, इसलिए मैंने उसे अकेला छोड़ने का निर्णय लिया। और वो विकृत व्यक्ति, चाहे वो कितना भी विकृत क्यों न लगे, प्रकाश की आत्मा है। जब तक वो विकृत व्यक्ति अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक जंगल में राक्षसों के बसने में कोई समस्या नहीं होगी, जब तक कि उनमें कुछ गड़बड़ न हो, समझ रहे हो? अब चूंकि हम अन्ना की निंदा और निर्वासन को रोकने में कामयाब रहे, जैसा कि मैंने शुरू में सोचा था, इसलिए मैं शाही राजधानी के विनाश की शुरुआती वजह को रोकने में कामयाब रहा। हालांकि हकीकत इतनी भी मीठी नहीं है कि सिर्फ इसी से सब कुछ हल हो जाए। सबसे पहले ड्यूक ने उस समय जो कहा था, उससे ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस और एमी दोनों को माफी मांगने पर कोई दोष न होने की वजह से हल्की सजा मिली। इसलिए हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एमी भविष्य में अन्ना से छुटकारा पाने के लिए क्या करेगी। दूसरी ओर ये कहानी कि युवराज और उनके दल को मैंने 5 बनाम 1 द्वंद्व युद्ध में हरा दिया था, कुलीनों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है और वे कहते हैं कि न तो युवराज और न ही उनके दल उनके परिवार के उत्तराधिकारी होने के योग्य हैं। विशेष रूप से जब युवराज ने अपनी राजनीतिक विवाह साथी अन्ना से संबंध तोड़ लिए, तो उन्होंने दक्षिणी अभिजात वर्ग का समर्थन खो दिया, जो ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के पक्ष में एकजुट हो गए थे। इन प्रभावों के कारण शाही महल के गुटों में बदलाव आया है। जहां मूल रूप से युवराज का वर्चस्व था और अब ये युवराज के गुट दूसरे युवराज के गुट और उदारवादी गुट के बीच विभाजित हो गया है, जिसका मानना है कि हमें देखना चाहिए और बेहतर विकल्प चुनना चाहिए। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि ड्यूक ने कोई भी फैसला लेने से पहले इंतजार करने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि ड्यूक और दक्षिणी अभिजात वर्ग को रामस्लेट गुट माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उदारवादियों के साथ मिलकर काम नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि उनके इरादे क्या हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने गुट के कुलीन लोगों को भी चुप करा दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि वे सही समय की तलाश में हैं, ताकि वे किसी भी पक्ष को अधिकतम लाभ पहुंचा सकें। वैसे ये सारी जानकारी मुझे सेबेस्टियन सान ने दी थी, और स्थिति खेल में अन्ना को निर्वासित किए जाने के बाद के दृश्य के समान है। मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ कि अगर मैंने उस समय युवराज को उपदेश दिए बिना ही उनका निपटारा कर दिया होता तो बेहतर होता, लेकिन फिर मैं चाहे कुछ भी करूँ, मुझे ऐसा करने के लिए फांसी ही मिल जाती। दुनिया इतनी सरल नहीं है। तारांकन 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 तारांकन, और फिर दूसरी कक्षा में स्कूल का पहला दिन आया और मुझे लगा कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। जैसी की उम्मीद थी, वह आम आदमी जो महामहिम से द्वंद्व युद्ध कर चुका है। अच्छा है, जैसी अफवाहें चारों ओर फैल रही थीं। मैंने इसकी परवाह नहीं की और अपनी कक्षा की स्थिति जानने के लिए ऑडिटोरियम की ओर चला गया, लेकिन वहां कुछ अप्रत्याशित हुआ। कृपया पहले इस पर एक नज़र डालें। एक अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट, दो एलन, तीन मार्गरेट वॉन अल्टमंट, चार एमी वॉन ब्रेयस, पांच मार्कस वॉन बेन्स, 10 ऑस्कर वॉन विमलेट, 18 कार्ल हेन्स बाटिल वॉन सेंट्रेन, 19 इसाबेला वॉन लुइनबर्ग, नीचे 20 श्रेणी, 20 लियोनार्डो वॉन ज्यूक्स, 38 ग्लेन वीटबर्ग। पहली अच्छी बात यह है कि अन्ना की सहेलियों और दोस्त इसाबेला को कक्षा एक में पदोन्नत कर दिया गया है। दूसरी ओर युवराज कई ग्रेड गिरने के बावजूद अभी भी कक्षा एक में ही है। खैर, मुझे लगता है कि युवराज को सर्वश्रेष्ठ छात्र का दर्जा देने के बाद अचानक उसे कक्षा बी में नहीं गिराया जा सकता। और लियोनार्डो, जो लगातार दूसरी बार अंतिम परीक्षा में अंतिम स्थान पर आए थे, अंततः बी श्रेणी में आ गए। सही कार्य करता है। और एक बात, क्या आपने सबसे बड़ा परिवर्तन देखा? हाँ, प्रिंस क्लाउड का नाम गायब था, जो पड़ोसी देश से विदेश में पढ़ाई करने आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि प्रिंस क्लाउड ने स्कूल छोड़ दिया है। न केवल मैं, बल्कि नोटिस बोर्ड पर देख रहे अन्य छात्र भी प्रिंस क्लाउड का नाम गायब देखकर आश्चर्यचकित थे। एलन, अन्ना, जिसने मुझे पाया, जीवंत आवाज में बोली। सुप्रभात, अनास्तासिया सामा। ओह ओह आह, सुप्रभात। अन्ना एक क्षण के लिए सिहर उठी, फिर मेरे अभिवादन का उत्तर देने से पहले इधर उधर देखने लगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपने प्रिंस क्लाउड के बारे में कुछ सुना है? नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ कि वर्गीकरण के लिए उनका नाम नोटिस बोर्ड पर नहीं था। मैं समझ गया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जाहिर है वेस्टडेल राज्य ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा है। क्या ऐसा है, वह बहुत कुछ झेल चुका है। ये सही है, इससे भी अधिक, चलो चलें। हाँ, फिर अन्ना के कहने पर मैं ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ और आगे की सीट पर बैठ गया। अब जब मैं याद करता हूँ तो एक साल पहले मैं पीछे कोने में बैठा था, तो चीजें बदल गई हैं। और जब शिक्षकों ने अपना लंबा भाषण समाप्त कर लिया तो अन्ना, क्राउन प्रिंस और एमी को मंच पर बुलाया गया। एलन, तुम भी आओ। क्या वह ठीक है? ओह, आपने मेरे एजेंट के रूप में काम किया, आपको मेरे पीछे से ये सब देखने का अधिकार है। समझ गया। जब मुझे ये बताया गया तो मैं अन्ना के पीछे चला गया और फिर मार्कस, ऑस्कर और लियोनार्डो, जिन्होंने हमें देखा, एमी के पीछे चले गए। अब मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या आप द्वंद्वयुद्ध के परिणाम को स्वीकार करेंगे? जब अन्ना ने ऐसा कहा तो एमी और युवराज के चेहरे निराशा से विकृत हो गए और फिर उन्होंने नीचे की ओर देखा। फिर अपने सिर को हल्का सा हिलाते हुए उसने झुककर एना से माफी मांगी। हम ड्यूक्स ऑफ रैमस्लेट के खिलाफ अपने शब्दों को वापस लेते हैं और उनके लिए माफी मांगते हैं। हम क्षमा चाहते हैं। मुझे खेद है, उनमें से कोई भी बहुत ईमानदार नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से जनता के सामने उनका माफी मांगना महत्वपूर्ण था। ठीक है, मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूँ। अब से मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से मेरे रैमस्लेट के ड्यूकर्डम को कम नहीं आंकेंगे। जब अन्ना ने उनकी माफी स्वीकार कर ली तो क्राउन प्रिंस, एमी और लियोनार्डो ने हमें घूर कर देखा और फिर जल्दी से अपनी सीटों पर वापस चले गए। दूसरी ओर मार्कस और ऑस्कर शर्मिंदा दिखते हुए जल्दी से वापस लौट आए। सच में मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस बात के लिए माफी मांगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और एक बात, यह मेरी तरफ से आपके लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह बाकी छात्रों के लिए भी एक घोषणा है। कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल, वास्तव में, अन्ना ने ऐसा कहा और एक सांस ली, फिर जोर से घोषणा की। एलन, मेरे प्रतिनिधि के रूप में आपने मेरे ड्यूक ऑफ रैमस्लेट के सम्मान की अच्छी तरह से रक्षा की है। ड्यूक ऑफ रैमस्लेट ने एलन और उसके परिवार को उसकी उपलब्धियों के सम्मान में और उसकी वफादारी के लिए पुरस्कृत करने के लिए हमारे संरक्षण में लेने का फैसला किया है। फिर एना ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मुझे दे दिया। यह मेरे ड्यूकडम का पारिवारिक प्रतीक चिन्ह है, जिसे मैंने कढ़ाई करके बनाया है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? धन्यवाद, मुझे शिष्टाचार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक उपहार स्वीकार किया। फिर एक दो लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाईं, मार्गरेट और इसाबेला, और मानो दोनों ने उन्हें आमंत्रित किया हो, सभी ने तालियां बजाईं। इसके बाद उद्घाटन समारोह बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया तथा पिछले वर्ष से चल रही इस घटना से उत्पन्न व्यवधानों की श्रृंखला समाप्त हो गई ताकि खलनायक की निंदा की जा सके। वैसे अन्ना सामा, मैं इस तरह की सामान्य समझ से परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपने वहाँ ऐसी घोषणा क्यों की? राजा ने तो इसे पहले ही मंजूरी दे दी है ना? वह तो बस दूसरे छात्रों पर एक जांच थी। यहाँ एलन पहले से ही रैमस्लेट के ड्यूकर्डम से संबंधित है, इसलिए उसके साथ खिलवाड़ मत करो। यह एक खतरा है कि अगर वे आपके साथ खिलवाड़ करते हैं तो वे रैमस्लेट के ड्यूक के दुश्मन बन जाएंगे, अन्ना ने थोड़ा शर्माते हुए ये कहा। इस तरह स्कूल जीवन का दूसरा साल शुरू हुआ जहां खलनायिका को स्कूल से निकाला नहीं गया, जो खेल में नामुमकिन था। दूसरी कक्षा में कक्षा और स्कूल की स्थिति बहुत बदल गई है। सबसे पहले एमी थी, जिसकी सेवा में अभी भी क्राउन प्रिंस, मार्कस, ऑस्कर और लियोनार्डो चार बचे हुए निशाने थे। हालांकि अब वे पिछले साल की तरह प्रभावशाली वर्ग में शीर्ष पर नहीं हैं। विशेष रूप से द्वितीय राजकुमार के गुट के कुलीन परिवारों के लोग क्राउन प्रिंस एंड कंपनी से स्पष्ट रूप से दूर रहने लगे। संक्षेप में, शाही दरबार में सत्ता के लिए संघर्ष को स्कूल में भी लाया गया है। इसके अलावा लियोनार्डो, जो कक्षा बी में चले गए, को स्पष्ट रूप से विरासत से वंचित कर दिया गया। ड्यूक ऑफ रैमस्लेट ने विस्काउंट ड्यूक्स के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया और लियोनार्डो पर पिछले साल पेन जलाने के कांड में अन्ना को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर करने हेतु हिंसा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। विरोध के जवाब में लियोनार्डो ने स्वीकार किया कि उन्होंने सही काम किया और जोरदार तरीके से अपनी वैधता का दावा किया। नतीजतन ड्यूक्स के पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं बचा। खैर, लियोनार्डो को पूरा यकीन था कि अन्ना ने ही ये किया है और उसे लगता था कि उसने जो किया वह सही था, इसलिए मुझे यकीन है कि वह सजा से बहुत खुश नहीं होगा। बेशक मुझे अन्ना की बेगुनाही पर पूरा यकीन है और मुझे तो ये भी शक है कि एमी ने भी इसमें भूमिका निभाई होगी। हालांकि तथ्य चाहे जो भी हों, हम बिना साक्ष्य के किसी अपराध का निर्णय नहीं कर सकते और हमारे लिए इसके बारे में व्यक्तिगत निर्णय लेना थोड़ा दुस्साहपूर्ण होगा। इसे ध्यान में रखते हुए यह शायद अच्छी खबर है कि लियोनार्डो को विरासत से वंचित कर दिया गया है और अब वह अगले नाइट कैप्टन के लिए उम्मीदवार नहीं है। अगर वह नाइट बनते भी तो निश्चित रूप से समस्याएं खड़ी करते और वह कभी नाइट कैप्टन नहीं बन पाते। इसके अलावा क्या लियोनार्डो अपनी विरासत से वंचित होने और अपने परिवार का समर्थन खोने के बाद उन ग्रेडों के साथ स्नातक हो पाएंगे? ये तो उसके प्रयासों पर निर्भर करेगा, लेकिन यदि वह स्नातक करने में असफल हो गया और उसे निष्कासित कर दिया गया तो क्या उसके पास जाने के लिए कोई स्थान होगा? वैसे दूसरी तरफ अन्ना के साथ तो बस एक सावधानी की वस्तु जैसा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन उसकी दोस्त इसाबेला की बदौलत, जो उसकी और मार्गरेट की ही कक्षा में है, उसका चेहरा पिछले साल से ज्यादा खिल उठा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उसकी मुस्कान देख पा रही हूँ। यह अच्छी बात थी कि सगाई टूट गई, मैं इस बात पर पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। और जहां तक मेरी बात है, मैं मूर्तियां बनाने का काम जारी रख रही हूँ। हालांकि पिछले साल से बड़ा फर्क यह है कि अब मैं अन्ना, मार्गरेट और इसाबेला से खुलकर बात कर सकती हूँ। मैंने सुना है कि इसका मुख्य कारण उद्घाटन समारोह में घटी घटना थी। उद्घाटन समारोह के दौरान अन्ना की जानबूझकर की गई कार्रवाई का महत्व मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, लेकिन समारोह के बाद मार्गरेट और इसाबेला के साथ हुई बातचीत से पता चला कि इसमें एक महत्वपूर्ण अर्थ छिपा हुआ था। यो नाइट कुन, तुम बहुत हॉट हो, है ना? बधाई हो एलन सान। उद्घाटन समारोह के बाद जब मैं अन्ना के साथ कक्षा की ओर जा रहा था तो मार्गरेट मेरे पास आई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इसाबेला भी थोड़ी प्रसन्नता भरी अभिव्यक्ति के साथ मेरे पास आई। मार्गरेट सामा और इसाबेला सामा, आपका क्या मतलब है? मैंने उनसे पूछा, पर मुझे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। अरे, क्या तुम्हें अन्ना सामा द्वारा हाथ से सिला हुआ पारिवारिक चिन्ह वाला रुमाल नहीं मिला? देखिए मार्गरेट सामा, एलन सान एक आम आदमी है, इसलिए इस तरह की बात। ओह, ये सही है। अन्ना अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। देखिए अन्ना सामा, आपको इसे ठीक से समझाने की जरूरत है, समझ रहे हैं? मार्गरेट के कहने पर अन्ना ने मुझे समझाना शुरू किया, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। आह ओम, चलो देखते हैं एलन। ये कुछ ऐसा है, एक महिला अपने परिवार के प्रतीक चिन्ह के साथ एक रुमाल देती है जिस पर हाथ से सिलाई की गई है, तो ये ओह ऐसे काम करता है। हाँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। एलन कुन, वह रुमाल जो तुम देख रहे हो एक उपहार है जो एक महिला अपने शूरवीर को देती है। दूसरे शब्दों में अन्ना सामा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि एलन कुन उसका है। हे भगवान, मुझे बहुत जलन हो रही है। हरे मार्गरेट, आह एलन मेरा उपकारक है। कुछ ऐसा ही मेरा भी है। ओह मैं समझ गया, तो बात ऐसी ही है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि इतनी खूबसूरत और अद्भुत महिला मुझसे ऐसा कह रही है, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता। मैं उसे अपने पिछले जीवन से जानता था और यदि संभव होता तो मैं उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए यह मेरे लिए उतना बुरा नहीं है, लेकिन यह एक जटिल भावना है। इसके अलावा, ड्यूक ने मुझे याद दिलाया है कि मैं तो बस एक दोस्त हूँ। मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि अन्ना की शादी अंततः किसी और से राजनीतिक रूप से हो जाएगी, इसलिए ज्यादा उम्मीदें मत लगाए। अभिजात वर्ग के राजनीतिक विवाहों में कौमार्य महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, और यदि वे गलतियां करने की उम्मीद नहीं करते हैं तो दोनों के लिए यह बेहतर होगा कि उन्हें चोट न पहुंचे। अनास्तासिया सामा, धन्यवाद। अगर कुछ भी हुआ तो मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगा। ओह, यह एक वादा है। और ठीक है, यह आपके पास है। यही कारण है कि अब मुझे पूरे स्कूल में अन्ना की सहायक मूर्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन जब लड़ाई गंभीर होती है तो मजबूत होती है। इसीलिए वे चार समूहों में विभाजित हैं। क्राउन प्रिंस का गुट, जो एमी के रिवर्स हरम के इर्द गिर्द केंद्रित है। द्वितीय प्रिंस का गुट, जो क्राउन प्रिंस के गुट से असहमत है। अवसरवादी गुट, जो अनिच्छा से ही क्राउन प्रिंस का अनुसरण करता है। और हम, ड्यूक ऑफ रैम्सलेट का गुट। ईमानदारी से कहूं तो स्कूल के भीतर भी गुटबाजी मामूली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यही इस देश का प्रतीक है। इसके अलावा, वर्तमान स्थिति अंततः खेल की तरह गृहयुद्ध की ओर ले जा सकती है। बहरहाल, स्कूल में हालात खेल से भी बदतर थे। युवराज के गुट की संख्या कम होती जा रही थी और द्वितीय युवराज के गुट और अवसरवादी गुट की संख्या बहुत बढ़ रही थी। इसका मतलब है कि द्वितीय युवराज के गुट के पास अब मेरे हस्तक्षेप से युवराज के गुट पर हमला करने का मादा है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि अगला राजा कौन बनेगा। हालांकि, मैंने अब तक पूरी तैयारी कर ली है और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मुझे ऐसी स्थिति से बचना है जहां राजधानी पर कब्जा हो जाए। और अब जब मैं नियति को नष्ट करने में सफल हो गया हूं, तो अब से खेल के अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ना खतरनाक है। खेल के ज्ञान का जिक्र करते हुए, जानकारी इकट्ठा करके तैयार रहना जरूरी है। हे साम्राज्य, मैं तुम्हें शाही राजधानी पर कब्जा नहीं करने दूंगा। मुझे हैरानी है कि मैं इन दिनों एक सामान्य स्कूली जीवन जी रहा हूं। मैं सुबह उठता हूं, छात्रावास में नाश्ता करता हूं और हमेशा की तरह कक्षा में जाता हूं। स्कूल के बाद, मैं अन्ना, मार्गरेट और इसाबेला के साथ पुस्तकालय में पढ़ाई करता हूं। फिर रात का खाना खाने के बाद, मैं छात्रावास में अपने कमरे में वापस आ जाता हूं और बाकी समय आराम से बिताता हूं। तब से, न तो इमी और न ही रिवर्स हरम के किसी सदस्य ने हमारे साथ कोई गड़बड़ की है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले साल जब मैं किसी से बात नहीं कर सका, वह एक झूठ था, एक सपने जैसा स्कूल जीवन था। एक दिन, जब मैं छात्रावास में अपने कमरे में आराम कर रहा था, सेबेस्टियन सान मुझसे मिलने आए और मुझे बाहर ले गए। शुभ संध्या, एलन सामा। उसके बाद, आपका स्कूली जीवन कैसा रहा? हाँ, अन्ना सामा, मार्गरेट सामा और इसाबेला सामा का धन्यवाद, ये संतुष्टिदायक है। क्या ऐसा है? तब तो अच्छी बात है। वैसे, स्कूल में सब कैसा चल रहा है? मेरी महिला के साथ हुई घटनाओं को सामने आने में काफी समय लगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं जो आपने नोटिस किया हो। मैं समझ गया, तो यह ऐसा ही था। दूसरे शब्दों में, मेरे पास आने का उनका मकसद जानकारी इकट्ठा करना था। मुझे यकीन है कि वह मेरे अलावा और लोगों से भी बात कर रहे होंगे, लेकिन संक्षेप में, ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के परिवार के सदस्य होने के नाते, वह मुझसे स्कूल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद कर रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं एक उपयोगी उपकरण बनकर पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहता। लेकिन अब जब वह मेरा समर्थक है और मैं चाहता हूं कि अन्ना मुस्कुराए, इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि ड्यूक ऑफ रैम्सलेट जिंदा रहे और खेल की तरह उसे मौत के घाट न उतार दिया जाए। बिल्कुल, मैं ड्यूक और अन्ना सामा दोनों का आभारी हूं, इसलिए मैं यथासंभव सहयोग करूंगा। बदले में, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शाही महल में क्या चल रहा है? क्या ये शाही महल में है? हाँ, जैसा कि मैंने ड्यूक से कहा था, मैं उत्तराधिकार के संघर्ष से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट को लेकर चिंतित हूँ। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सेबेस्टियन सान किसी चीज के बारे में लंबे समय से सोच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह .. वर्तमान स्थिति में आप क्या सोचते हैं, एलन सामा? सच कहूं तो, मैं अभी तक इसे समझ नहीं पाया हूं। मैं विशेष रूप से प्रिंस क्लाउड के बारे में जानने को उत्सुक हूं। अच्छा, ऐसा है। सेबेस्टियन सान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन मैं देख सकता था कि वे थोड़े परेशान थे। इसलिए मैंने विषय को थोड़ा बदलने की कोशिश की। इस समय मैं राजकुमार का समर्थन करने की स्थिति में हूं, जो ड्यूक का समर्थन करता है। ये सही है। हालांकि, यदि यह संभव हो तो मैं चाहूंगा कि वे या तो क्राउन प्रिंस को निर्वासित करने का निर्णय लें या फिर भविष्य में उन्हें क्राउन प्रिंस के रूप में स्वीकार न करें। तो आप कह रहे हैं कि आप पश्चिम के बारे में चिंतित हैं? हाँ, मेरा यही मतलब था, बस मेरे पास निश्चित होने के लिए बहुत कम जानकारी है। क्या ऐसा है? ये सही है, मैं समझ गया। मैं आपको बाद में ड्यूक के निवास पर आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद। इस प्रकार, मुझे ड्यूक के निवास पर पुनः आमंत्रित किया गया। तारांकन 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 तारांकन। आपका स्वागत है, मुझे आशा है कि आप स्कूल में अपना समय आनंदपूर्वक बिता रहे होंगे।
जैसे ही मैं ड्यूक के निवास के ड्राइंग रूम में पहुंचा, ड्यूक ने मुझे बुलाया।
हाँ, अन्ना सामा मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं।
ठीक है, उसके दोस्त के रूप में जब अन्ना को जरूरत हो तो उसकी मदद करो।
इसीलिए उन्होंने पुनः मित्र शब्द पर जोर दिया।
हाँ बिल्कुल, मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए अगर मैं अन्ना सामा की कुछ मदद कर सकूँ तो मुझे संतुष्टि होगी।
अब मैं सामान्य व्यक्ति शब्द पर जोर देकर स्थिति प्रणाली का पालन करने की अपनी इच्छा को दर्शाता हूँ।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट।
ठीक है,
पास।
ड्यूक मुस्कुराया और सीधे मुद्दे पर आ गया।
अब एलन कुन,
नहीं, एलन का कहना है कि आप पश्चिम के बारे में चिंतित हैं।
आपने मुझे जो जानकारी दी उससे आपने क्या अनुमान लगाया?
हाँ, मैंने सुना है कि प्रिंस क्लाउड को वेस्टेडेल साम्राज्य के अनुरोध पर स्कूल से निकाल दिया गया था।
इससे मुझे यह अनुमान है कि वेस्टेडेल साम्राज्य ने ईस्ट साम्राज्य के साथ किसी प्रकार का समझौता किया होगा।
हो, ड्यूक मेरी ओर दिलचस्पी भरी नजरों से देखता है।
शायद आम राय यह है कि यह निष्कासन प्रिंस क्लाउड द्वारा दिखाए गए अपमान के लिए एक फटकार और सजा है।
ये सही है, आमतौर पर इसे इसी तरह समझा जाता है।
हालांकि प्रिंस क्लाउड की मानसिकता को देखते हुए मुझे लगता है कि वह हिमी सामा के बगल में रहना पसंद करेंगे, भले ही इसका मतलब खुद को शर्मिंदा करना हो।
आप ऐसा किस लिए सोचते हो?
प्रिंस क्लाउड एमी सामा से अंधाधुंध प्यार करता था, यह उस पागलपन भरे द्वंद्व से स्पष्ट हो जाना चाहिए।
तो फिर प्रिंस क्लाउड स्कूल छोड़ने के लिए क्यों सहमत हुए?
यह एमी सामा के सर्वोत्तम हित में है कि वह अकादमी में न रहे।
हो, तुम्हारा मतलब?
हाँ, क्या प्रिंस क्लाउड को यह उम्मीद नहीं है कि एमी सामा को हमारा देश छोड़ना पड़ेगा?
यही उत्तराधिकार विवाद से पैदा हुई उलझन सामने आती है,
और अगर यह सिर्फ उत्तराधिकार का विवाद है तो यह अकल्पनीय है कि एमी सामा, जो इतने शक्तिशाली कुलीन व्यक्ति के वैध पुत्र की कृपा पात्र है, देश छोड़कर भाग जाएगी।
दूसरे शब्दों में, क्या प्रिंस क्लाउड को यह नहीं लगता कि युद्ध से तबाही मचने की पूरी संभावना है?
बेशक ये भी संभावना है कि क्राउन प्रिंस का पक्ष हार जाएगा और एमी और उनके परिवार को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सिद्धांत थोड़ा दूर की कड़ी है।
लेकिन जब ड्यूक ने मेरी राय सुनी तो वह कुछ देर तक चुप रहा, सोचता रहा और फिर उसने मुस्कुराकर अपना मुंह खोला।
यह एक दिलचस्प तर्क है।
हालांकि वेस्टेडेल साम्राज्य हमारे देश का मित्र है और उत्तर में नौसेन के यूनाइटेड किंगडम के विरुद्ध एक सहयोगी है। ये हमारे देश से खाद्य और संसाधनों के आयात पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है।
वेस्टेडेल साम्राज्य ईस्ट एम्पायर के साथ ऐसा समझौता क्यों करेगा?
ये सिर्फ एक संभावना है।
हालांकि इस साल स्कूल की नए छात्रों की सूची में वेस्टेडेल की राजकुमारी का नाम शामिल नहीं था, जो प्रिंस क्लाउड से एक साल छोटी हैं।
इसमें गलत क्या है?
मैंने सुना है कि वह मूलतः अपने ही देश के किसी स्कूल में दाखिला लेने की योजना बना रही थी।
नहीं, अगर यह इतना महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है तो मुझे लगता है कि उन्होंने किसी और को यहाँ भेजा होगा।
या अगर राजनीतिक विवाह की बात चल रही होती तो यह अजीब नहीं होता, है ना?
हम कम से कम वेस्टेडेल साम्राज्य ईस्ट साम्राज्य या जॉस साम्राज्य के साथ संबद्ध नहीं है।
इसके अलावा अगर नौसन का यूनाइटेड किंगडम और वेस्टेडेल साम्राज्य शांति स्थापित करते हैं तो हमारा देश दुश्मनों से घिर जाएगा।
क्या यहां सबसे बुरा मान लेना बेहतर नहीं होगा?
हालांकि इतना कहने के बाद भी मेरा मानना है कि निष्कासन कई मायनों में एक सजा है।
लेकिन दूसरी ओर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ईस्ट साम्राज्य के आक्रमण के समय वेस्टेडेल साम्राज्य मदद करेगा।
बेशक खेल में वेस्टेडेल साम्राज्य ने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि हमारी मदद की।
लेकिन वेस्टेडेल साम्राज्य ने क्राउन प्रिंस एमी और बाकी लोगों की मदद इसलिए की क्योंकि प्रिंस क्लाउड, जो एमी के प्यार में पड़ गए थे, ने उस पल को देखा था जब एमी एक संत के रूप में जागृत हुई थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने देश को मनाने के लिए किया था।
इस तथ्य के कारण कि यह एक खेल था, इसमें कुछ अवसरवादिता हो सकती है।
हालांकि प्रिंस क्लाउड, जिन्हें एमी को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने स्कूल छोड़ दिया है।
यह असंभव है कि प्रिंस क्लाउड एमी के जागने के समय मौजूद हों।
इसके अलावा सबसे पहले तो मुझे इस बात पर बहुत संदेह है कि एमी कोई संत हो सकती है।
जब तक वह विकृत व्यक्ति प्रकाश की आत्मा के रूप में अपनी मनमानी करता रहेगा तब तक एल्फ विलेज बचाव कार्यक्रम घटित नहीं होगा।
अगर ऐसा है तो वह एल्फ विलेज तक नहीं पहुंच पाएगी,
और अगर ऐसा हुआ तो प्रकाश की आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने की घटना भी घटित नहीं होगी।
इसके अलावा भले ही वह एल्फ गांव तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन प्रकाश की आत्मा वह विकृत है।
क्या एमी को कुछ भी करने के लिए 10 साल छोटी उम्र का होना जरूरी नहीं है?
और जब ऐसा होता है तो यह विश्वास करना कठिन है कि वे देश को एक ऐसे बैरन की नाजायज बेटी को पुनः प्राप्त करने के लिए बल प्रदान करेंगे जो कोई संत नहीं है, और एक युवराज जो एक आम आदमी से अपमानजनक तरीके से हार गया।
स्पष्ट रूप से कहें तो ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि क्षेत्र को साझा करने के लिए ईस्ट साम्राज्य के साथ हाथ मिलाना बेहतर होगा।
हम यह अच्छी बात है, मुझे हैरानी है कि आपने इतनी कम जानकारी के बावजूद इतनी दूर तक सोचा।
ये सच है कि वेस्टडेल के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन रैम्सलेट के ड्यूक होने के नाते मैं मौजूदा हालात में शाही परिवार से अलग नहीं हो सकता।
हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हुआ है न।
लेकिन ड्यूक एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर धीरे से अपना मुंह खोला।
एलन, फ्रेडरिक अब वापस आ गया है,
जानते हो क्यों?
क्या?
परिवार का अगला मुखिया एस्टेट में वापस आ गया है। रैम्सलेट की दची दक्षिणी अन्न भंडार है और दक्षिण में जॉस का साम्राज्य है। इसके अलावा जॉस का साम्राज्य ईस्ट साम्राज्य का सहयोगी है।
मुझे मत बताओ कि एस्ट और जॉस एक ही समय में आगे बढ़ रहे हैं।
ड्यूक मेरी बात सुनकर मुस्कुराया।
फुफुफु, बुरा नहीं है एलन,
लेकिन सेना अचानक कोई कदम नहीं उठा सकती।
गर्मियों तक, जब सर्दियों की गेहूं की फसल कट जाएगी, तब तक वे कोई कदम नहीं उठाएंगे।
तुम्हें मेरी बेटी का रुमाल मिला है ना?
मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ।
हाँ, ऐसा लगता है कि चीजें मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक हैं।
लेखक का नोट, यदि देशों के नाम याद रखना कठिन हो तो नीचे दी गई दिशा में उन्हें याद रखना आसान हो सकता है।
गृह देश केंद्र केंद्रीय सेंट्रेरियन किंगडम, पूर्वी पूर्व पूर्वी साम्राज्य, पश्चिमी पश्चिम वेस्टडेल किंगडम, दक्षिणी दक्षिण जॉस का साम्राज्य, उत्तरी उत्तर नॉसेन का यूनाइटेड किंगडम।
खैर, ड्यूक की चिंता के बावजूद मैंने पहले सत्र की अंतिम परीक्षा बिना किसी समस्या के पूरी कर ली और परिणाम भी घोषित कर दिए गए।
प्रथम स्थान अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रैम्सलेट 500, प्रथम स्थान मार्गरेट वॉन अल्टमेंट 500, प्रथम स्थान एलन 500, चौथा स्थान इसाबेला वॉन लुइनबर्ग 489, पांचवां स्थान मार्कस वॉन बेन्स 457, नौवां स्थान एमी वॉन ब्रेयस 421, दसवां स्थान ऑस्कर वॉन विमलेट 417, 32वां स्थान कार्ल हेन्स बाटिले वॉन सेंट्रेन 392, 38वां स्थान लियोनार्डो वॉन जुकेस 223।
हमने कर दिखाया, अन्ना को न सिर्फ परफेक्ट स्कोर मिला बल्कि मार्गरेट को भी परफेक्ट स्कोर मिला और इसाबेला भी परफेक्ट स्कोर पाने के बहुत करीब है।
और किसी वजह से एमी, जिसे एक होशियार लड़की माना जाता था, बद से बदतर होती जा रही है।
मुझे लगता है कि परीक्षा की विषय वस्तु जापानी जूनियर हाई स्कूल के स्तर की ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें हों।
खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल तो कोई खास नुकसान भी नहीं है।
इमी चुप है, मानो उसे पकड़ लिया गया हो, और युवराज और उसके मित्र ऐसी स्थिति में हैं कि वे अन्ना के सामने असहाय हैं।
वह इन दिनों मेरे साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करता, क्योंकि मैं जादू और तलवारबाजी दोनों में भारी अंतर से जीतता हूँ।
मुझे नहीं पता कि मैं आलसी था या बाहर नहीं जा सका, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने शीतकालीन अवकाश के दौरान अपना स्तर नहीं बढ़ाया।
वैसे भी, जब तक वे हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करते, हमें उनके साथ कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें उनकी परवाह नहीं है।
मैं उत्तराधिकार विवादों और विदेशी संबंधों को लेकर अधिक चिंतित हूँ।
संघर्ष केवल एक ही स्तर पर हो सकता है, और प्रेम का विपरीत उदासीनता है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन शब्दों को इस तरह महसूस करूंगा।
अब आज मैंने अन्ना के साथ एडवेंचरर्स गिल्ड में जाने का वादा किया है।
अरे, जाने से पहले मैं अन्ना को मास्टर से मिलवाने या ऐसा कुछ करने की बात नहीं कर रहा हूँ।
अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा सिर सचमुच उड़ जाएगा।
एह, अगर इसका मतलब ये ना हो तो क्या होगा?
खैर, मुझे ये पता है, लेकिन फिर भी।
वैसे भी स्कूल में हम छात्रों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान कुछ स्वतंत्र शोध करने की आवश्यकता है,
और अन्ना इस देश में साहसी लोगों की भूमिका के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए हमने गिल्ड में जाने का निर्णय लिया ताकि ये देखा जा सके कि क्या यह एक विषय हो सकता है।
मैंने गिल्ड को पहले ही सूचित कर दिया है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी।
वैसे मार्गरेट और इसाबेला भी साथ मिलकर स्वतंत्र शोध करने की योजना बना रही हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी रुचियां हैं, इसलिए मैंने उनसे आज पुस्तकालय में कुछ शोध करने को कहा है, और हम बाद में एक विषय पर निर्णय लेने के लिए मिलेंगे।
अब चूंकि हमने सादे कपड़े पहन लिए थे, इसलिए हम ड्यूक की गाड़ी में जाने के बजाय पैदल ही गिल्ड की ओर चल पड़े ताकि कोई हंगामा न हो।
अन्ना बहुत ज्यादा ध्यान खींच रही थी, इसलिए मैंने उसे हुड वाला लबादा पहनने को कहा, हालांकि थोड़ी गर्मी होगी।
हम शहर की मुख्य सड़क पर चले, फिर कोने से होते हुए एक ऐसी गली में पहुंचे जो मुख्य सड़क से अलग थी।
तभी मुझे एमी और उसकी सहेलियां, जिन्हें मैं पहले महत्वहीन समझ रहा था, एक गली में दिखाई दी।
हम, एमी सामा और क्राउन प्रिंस और बाकी लोग, आखिर वे ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं?
यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वे दीवार के सहारे एक छोटे से व्यक्ति को घेरे हुए हैं जिसने एक कच्चा लिनन का वस्त्र पहना हुआ है।
मुझे स्थिति के बारे में तो ठीक से पता नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है?
हमने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया, फिर चुपचाप उनके पास गए।
वह व्यक्ति बहुत दुबला पतला लग रहा है।
पुरुष तो इतना दुबला पतला नहीं होता, तो जरूर कोई महिला होगी जो उसके आसपास खड़ी है।
इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम राक्षसों से छुटकारा पा लेंगे,
इसलिए जल्दी करो और हमें गांव तक पहुंचा दो।
हम अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो राक्षसों के हमले के कारण मुसीबत में हैं।
एमी के बाद लियोनार्डो भी यही कहते हैं। खैर, चूंकि मैं खास हूं, इसलिए मैं इसे यही छोड़ता हूं। लेकिन क्या एना पहले से ही इस ग्रेड की सबसे बेहतरीन परफॉर्मर नहीं है? और क्या आप लोग ज्यादातर अलग थलग नहीं हैं?
इसके अलावा, आप अपनी कक्षा में अव्वल होने के बावजूद इतने ऊंचे और शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं?
हाय, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती।
महिला, जो पूरी तरह से भयभीत दिख रही थी, कांपते हुए बोली।
अगले राजा, मुझसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
फिलहाल चलो उसकी मदद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने वो आवाज पहले भी सुनी हो।
और उनके उलट मार्कस और ऑस्कर, जो साथ तो हैं लेकिन इसमें शामिल नहीं हुए।
मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें इसके लिए कोई अपराध बोध होता है।
हालांकि मुझे लगता है कि जब मैं इसे नहीं रोकता तो मैं भी उतना ही दोषी महसूस करता हूँ।
मैंने एना की ओर देखा और उसने जोर से सिर हिलाया, तो मैंने उन्हें आवाज दी।
अरे, तुम लोग यहाँ ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो?
तभी एमी ने मुझे ओनी की तरह घूर कर देखा।
क्या आप फिर से मेरे काम में दखलंदाजी करने वाले हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे आशीर्वाद लेने से रोक रहे हैं, है ना?
आप किस बारे में बात कर रहे हैं?
मुझे नहीं मालूम कि वह किस बारे में बात कर रही है।
लेकिन अगले ही पल वह छोटी सी महिला मेरी ओर दौड़ी।
ए एलन, मेरी मदद करो।
फिर उसने मेरे पेट पर जबरदस्त जोर से प्रहार किया।
ओवात्सु, ये क्या बकवास है? मैं इसे टाल नहीं सका क्योंकि अन्ना मेरे पीछे थी, इसलिए मैंने इसे जल्दी में ले लिया।
क्या यह आवाज शेरिल लॉरा सान की हो सकती है?
ये सही है। कृपया, कोई अजीब आदमी मुझे कहीं से धमकी दे रहा है।
मेरी मदद करो, मुझे यकीन है कि वह मेरे पैसे ले जाएगा।
जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि अन्ना के आसपास की हवा ठंडी हो गई है।
खतरनाक, क्या वह नाराज है?
मैं समझ गया। महाराज, शहर के बीचों बीच डकैती करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं?
क्या बकवास कर रहे हो?
हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि एमी को एक दिव्य भविष्यवाणी मिली थी कि यहाँ एक व्यक्ति आएगा जो उनके गांव के लिए मदद मांगेगा जिस पर राक्षसों का हमला होगा। और भविष्यवाणी के अनुसार यह महिला ठीक उसी जगह और उसी रूप में प्रकट हुई जैसा भविष्यवाणी में बताया गया था।
भविष्यवाणी, आशीर्वाद, शेरिल लॉरा सांग की इच्छा।
आह, मैं समझ गया। तो यह हेल्प गांव से मदद के अनुरोध की अनिवार्य घटना है।
ओह, शेरिल लॉरा सान, क्या ऐसा कुछ हुआ था?
हम पर राक्षसों द्वारा हमला नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ एलन से नौकरी मांगने आया हूँ।
शेरिल लॉरा सान, जो मेरी पीठ के पीछे बैठी थी, ने ऐसा कहा।
ऐसा ही है, तो क्या अब आप उसे परेशान करना बंद कर सकते हैं?
हालांकि उसने मेरी ओर घूर कर देखा और मेरी बात नहीं मानी।
महाराज, क्या महाराज का शहर के बीचों बीच लूटना सचमुच उचित है? जब अन्ना ने क्राउन प्रिंस से यह बात कही तो उन्होंने काफी समय बाद पहली बार ठंडी निगाहों से देखा, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने हार मान ली हो।
अरे, कोई फायदा नहीं है, चलो घर चलें।
एक मिनट रुको, कालसामा।
फिर उन्होंने हमें घूरा और शर्मिंदा होकर चले गए।
जैसा कि एलन से उम्मीद थी, मैं बच गया,
शेरिल लॉरा ने मेरी पीठ से चिपकते हुए कहा। लेकिन न जाने क्यों एना मुझे ठंडी नजरों से देख रही है।
अरे एलन, उस लड़की का क्या हुआ?
अरे एलन, ये छोटी लड़की कौन है?
मैं छोटी बच्ची हूँ।
मुझसे छोटी बच्ची? मुझे छोटी बच्ची कह रही है?
ये बदतमीज इंसान, अपनी पहचान बताओ।
ओह, मुझसे छोटी लड़की को छोटी लड़की कहने में क्या गलत है?
जब मैं उस माहौल से भ्रमित था जो फटने वाला लग रहा था, तो उसका खामियाजा मुझ पर पड़ा।
अरे एलन, इस बदतमीज छोटी लड़की के बारे में कुछ करो।
ओह एलन, तुम मेरे पक्ष में हो, है ना?
नहीं, एक मिनट रुको, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो?
तभी अन्ना ने स्तब्ध होकर शेरिल लॉरा का हुड उतारने के लिए हाथ बढ़ाया।
ओह अन्ना सामा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा।
मैंने उसे अपना हुड लगभग उतारने से रोक लिया। अगर किसी एल्फ के लंबे कान ऐसी जगह दिख जाएं, तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा।
ओह एलन, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे, है ना?
अरे एलन, क्या तुम्हें मेरी तरफ नहीं होना चाहिए?
शेरिल लॉरा ने उछलती आवाज में ऐसा कहा और अन्ना ने आंसू भरे चेहरे के साथ मुझ पर गुस्सा किया।
अरे फिर से नहीं, कृपया इसे बंद करो। फिलहाल चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां हम शांति से बात कर सकें।
ये कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और चलना शुरू कर दिया।
लोग यहां इस मौजूदा विवाद की वजह से जमा हुए हैं। अगर शेरिल लॉरा के कान ऐसी जगह खुले में आ गए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी।
तो मैं उन्हें एडवेंचरस गिल्ड ले गया और मास्टर से वीआईपी के लिए एक रिसेप्शन रूम किराए पर लेने को कहा और उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी अंदर ना आए। आखिरकार हमारे पास बातचीत करने के लिए एक शांत माहौल था।
अब एलन, मुझे उससे मिलवाओ।
हाँ अन्ना सामा, यह महिला शेरिल लॉरा सामा है।
वहलवेन गांव की रानी की बेटी है। शेरिल लॉरा, यह अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट है, जो रामस्लेट के ड्यूक की बेटी है, और वह जिसकी मैं रिनी हूँ। हम, अन्ना खूबसूरती से जम गई। फिर कुछ सेकंड तक जमी रहने के बाद वह तुरंत एक कुलीन महिला के चेहरे पर आ जाती है और एक महिला जैसा शिष्टाचार निभाती है। मुझे नहीं पता था कि आप उनकी शाही राजकुमारी हैं और मैं अपनी अशिष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरा नाम अनास्तासिया है, मैं ड्यूक ऑफ रामस्लेट की बेटी हूँ। महारानी शेरिल लॉरा, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि सब ठीक है, तो फिर तुम इतनी अजीब मुद्रा में क्यों हो? आह, अन्ना फिर से ठिठक गई। अन्ना सामा, समझाने में हुई देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। एल्विन गांव में ऐसे शिष्टाचार नहीं होते और हैसियत का कोई खास महत्व नहीं होता। क्या तो शेरिल लॉरा सान, आखिर तुम क्या चाहती हो? ओह, ये सही है, मैं यहाँ एलन से नामांकन का अनुरोध करने आया हूँ। एल्फ विलेज में एक ग्रीष्मकालीन उत्सव होने वाला है जिसे हम हर 10 साल में एक बार मनाते हैं, इसलिए मैं एलन को आमंत्रित करने आया हूँ। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब किसी एडवेंचरर को नामांकन का अनुरोध मिलता है तो उसे ऐसा करना ही चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि तुम हाल ही में यहाँ नहीं आ रहे हो एलन। मेरिल, रोसामा और तुम्हारे गांव के सभी लोग तुम्हें याद करते हैं, तुम्हें पता है। नहीं, तुम कहते हो कि मैं हाल ही में वहां नहीं गया, लेकिन क्या मैं सर्दियों की छुट्टियों में नहीं गया था? और तुम सिर्फ गर्मियों के त्योहार के लिए यहां आने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? अच्छा शेरिल लॉरा सान, तुम्हें पता है कि इंसानों के शहर कल्पित बौनों के लिए खतरनाक होते हैं, है ना? और जब मैं इस सर्दी में वहां गया था तब तुमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था, जानते हो? तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? अरे नहीं, तुम जानते हो, मैं सोच रहा था कि क्या मुझे एलन की उस उड़ने वाली नाव पर सवारी मिल सकती है। इतनी साधारण सी बात के लिए इतना जोखिम मत उठाओ। ओह, मुझे माफ करना, मतलब अब मैं क्या करूं? अन्ना को भी ब्यूटर के बारे में पता चल गया। अरे एलन, लगता है तुम्हें बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। हाँ, अन्ना की निगाहें बहुत ठंडी हैं। सबसे पहले, आप कल्पित बौनों से क्यों परिचित हैं? बेशक, ऐसा इसलिए है क्योंकि एलन हमारे गांव का हितैषी है। शेरिल लॉरा सान अन्ना के प्रश्न का उत्तर देती हैं। ओह, तो एलन एक परोपकारी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एलन पवन देवता का प्रिय बच्चा है जो उस समय आकाश से उतरा था जब गांव पर एक दुष्ट आत्मा ने हमला किया था। हवा के देवता का प्रिय बच्चा? ओह, तुम्हें नहीं पता? फूफू, तुम लोग ऐसे लग रहे हो जैसे तुम साथ मिल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओह, शायद वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल तुम्हें अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहा है ना? अरे शेरिल लॉरा सान, अन्ना बहुत हैरान दिख रहे थे। कृपया अन्ना सामा को ज्यादा परेशान मत करो। अरे नहीं, तुम्हें ऐसी ही एक छोटी लड़की चाहिए एलन, शेरिल लॉरा ने पेट दर्द से भरी प्रसन्न हंसी के साथ कहा। कृपया मेरा मजाक मत उड़ाए, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जो आप नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, तो मैं एलन को ग्रीष्मकालीन उत्सव में आने के लिए कहने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अच्छा ये ठीक है, तो ये कब है? ये कल से शुरू होगा। ओह, अगर यह एलन है तो क्या हमें तुरंत वहां नहीं पहुंचना चाहिए? ठीक है, हाँ, लेकिन रुको, अगर एलन जा रहा है तो तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा, ठीक है? जब हम ये बातें कर रहे थे अन्ना ने हमें बीच में रोक दिया। हाँ नहीं, तुम नहीं जा सकती, मैं एलन के अलावा किसी और इंसान को गांव में नहीं ले जा सकती। अगर तुम एलन की पत्नी होती तो यह संभव होता, लेकिन तुम नहीं हो, है ना? तुम लोग ज्यादा ध्यान से नहीं देखते, समझ रही हो? जब एना ने शेरिल लॉरा की यह टिप्पणी सुनी तो वह चुप हो गई और स्तब्ध रह गई। ओह, लेकिन मैं क्या करूं, ये तो मुश्किल लग रहा है। शेरिल लॉरा सान, क्या यह अच्छी बात है कि एल्फ विलेज का अस्तित्व पता चल गया? मैंने उत्सुकता से शेरिल लॉरा सान से पूछा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बेशक ये बुरा है। तुम्हें पता है क्या शेरिल लॉरा सान, जब तुम एडवेंचरर्स गिल्ड में कोई अनुरोध करती हो तो वे तुम्हारी पहचान की जांच करते हैं। अगर शेरिल लॉरा सान ने अनुरोध किया होता तो बड़ा बवाल मच जाता और वह पकड़ी जाती। हम ठीक हो जाएंगे, अगर मैं आत्माओं को बुलाऊं तो वे एक दो इंसानों का ख्याल रख सकती हैं, शेरिल लॉरा सान ने इसे आत्मसंतुष्टता से कहा, लेकिन यह अलग है, ऐसा नहीं है। आखिर मैं उसके साथ क्या करूं, वह तो सामान्य बुद्धि से बिल्कुल बेखबर है। एक या दो नहीं बल्कि 10 या 100 लोग आएंगे। ओह, मैंने कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या मनुष्य सचमुच कल्पित बौनों को इतनी बुरी तरह से पकड़ना चाहते हैं? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शेरिल लॉरा सान यहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति हैं। आखिर आप इस शहर में कैसे पहुंच गई? मैं हमेशा की तरह गेट से अंदर गया, ठीक है, मुझे रोका नहीं गया, समझे? अरे द्वारपाल, बढ़िया है, पर अपना काम ठीक से करो। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल चलो समर फेस्टिवल में चलते हैं। मुझे कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुमने मेरा ख्याल रखा था और मैं भी नहीं चाहती थी कि मुझे पकड़ा जाए। तो फिर चलो साथ में चलें। तुरंत, इसके बजाय कृपया मुझे अन्नासामा को अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। या यूं कहें कि अन्नासामा के बिना शेरिल लॉरा सान शहर से बाहर नहीं जा पाएगी, उसे गेट पर ही रोक दिया जाएगा। लेकिन ये छोटी लड़की आपकी पत्नी नहीं है, है ना? हालांकि मैं उसे हमारे साथ गेट तक जाने और काम खत्म करने के लिए नहीं कह सकता। हमम, ठीक है, एलन भी यही सोचता है। शेरिल लॉरा सान ने धीरे से अपनी नज़र मेरे और अन्ना के बीच घुमाई, फिर थोड़ी निराशा के भाव के साथ एक हल्की सी आह भरी और कुछ अजीब सा कह दिया, तो फिर क्या मुझे इसे आपके मंगेतर के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए? फाई फाई, मंगेतर, अन्ना ठिठक गई। टी एल, ये बातचीत उसके दृष्टिकोण से चीनी की अधिक खुराक होगी। नहीं, हाँ चलो इसके बारे में सोचते भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा सिर सचमुच उड़ जाए। तो फिर कृपया ऐसा कीजिए। अन्ना सामा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप हमारे साथ हेल्प गांव चलना चाहेंगी? हम बाद में इन साहसी लोगों के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। ओह, इस तरह मैं इस स्थिति से बाहर निकलने में कामयाब रहा और अन्ना को वापस ड्यूब के घर ले गया। मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन वह रात भर बाहर रहने की अनुमति लेकर तुरंत वापस आ गई। फिर अन्ना के चेहरे के पास के साथ हम रईसों के लिए गेट से बाहर निकल गए और उत्तर पूर्वी जंगल में लुर्डेन हवाई अड्डे की ओर बढ़ गए। अरे एलन, इस जगह का क्या मतलब है? जंगल के बीच में ये सीधी खुली जगह क्यों है? जब हम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो एना ने आश्चर्य भरे चेहरे के साथ यह बात कही। यह मेरा गुप्त अड्डा है, यहाँ आने वाला एकमात्र व्यक्ति आप ही हैं अन्नासामा, इसलिए कृपया इसे अपने तक ही रखें। ओह, ये तो सिर्फ मैं ही हूँ, है ना? किसी कारणवश जब अन्ना ने ये कहा तो वह कुछ खुश दिख रही थी। हाँ, तो फिर मैं तैयार होने जा रहा हूँ, इसलिए कृपया यहीं प्रतीक्षा करें। मैंने ऐसा कहा और ब्यूटर को भूमिगत हैंगर से बाहर ले गया। क्या जमीन से? यह एक ऐसा कौशल है जो मेरे पास है। मुझे नहीं पता था कि अगर मैंने इसे सार्वजनिक कर दिया तो क्या होगा, इसलिए मैंने इसे गुप्त रखा। ओह, मैं समझ गया, रहस्य है ना? ठीक है, हाँ, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कृपया ज्यादा उत्तेजित मत होइए। और चूंकि यह मूल रूप से एक सीट वाली गाड़ी है, इसलिए मैं आप दोनों को सुरक्षित रखने के लिए रस्सी से बांध दूंगा। क्या ये ठीक है? बिल्कुल, मैं उस पर उड़ान भरने के लिए उत्सुक हूँ। उड़ो, तुम क्या कह रहे हो? नहीं, यह एलन है, इसलिए वह ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक है, मैं खुद को तैयार कर लूंगा। एक बार जब वे सहमत हो गए तो मैंने उन्हें ब्यूटर से जोड़ दिया। ओम एलन, मैं इस तरह क्यों बंधा हुआ हूँ? शायद ये, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे कोई अच्छा संतुलन मिल सकता है। अरे एलन, क्या यह ओवरलोड नहीं हो रहा है? और वह करीब, क्या आप बहुत करीब नहीं हैं? मुझे माफ करना, लेकिन इसके अलावा ये स्थिर नहीं लग रहा है, इसलिए कृपया मेरा साथ दें, फिर हम चलते हैं। मैं पवन जादू इंजन शुरू करता हूं और ब्यूटर को लंबवत उड़ाने के लिए पूरी शक्ति का उपयोग करता हूं। मैं स्टीयरिंग के लिए मुंह के बल लेट गया और एना इस तरह लेट गई कि उसका चेहरा मेरी कमर पर था। एना के भरे हुए स्तन मेरे नितंबों और जांघों से टकरा रहे थे, जो एक अच्छा अनुभव था। लेकिन हाय, मुझे पता था, और शेरिल लॉरा सान जो चीख रही थी हवा में लटकी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले ऑक को उठाते समय किया था। मैंने सामान लटकाने वाले हुक में रस्सियां डाल दी और शेरिल लॉरा सान को हवा में लटकी हुई अवस्था में लटका दिया। एलन, अद्भुत, यह अद्भुत है और तेज, आखिर क्या हो रहा है? ब्यूटर ने तेजी से गति पकड़ी, ऊंचाई हासिल की और तभी मैंने अपने पीछे से अन्ना की उत्साहित आवाज सुनी। यह उसी तरह है जैसे हवा से कागज का एक टुकड़ा उड़ जाता है। ये भी पवन जादू का ही एक प्रयोग है। ये सच नहीं है, लेकिन मैं उन्हें लिफ्ट के बारे में कितना भी बताऊं, वे कभी नहीं समझेंगे। अरे, शाही राजधानी और शाही महल तो पहले से ही बहुत छोटे हैं। हाँ, एल्विन गांव तक उड़ान भरने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। हमें सूर्यास्त के समय ही पहुंच जाना चाहिए। वैसे शेरिल लॉरा सान, जिन्हें फांसी पर लटकना चाहिए था, चुप थी, लेकिन मैं उनका वजन महसूस कर सकती हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो गिरी हों। मैं समझ गया, जैसा कि मैंने सोचा था कि आप अद्भुत हैं एलन। मैंने महसूस किया कि अन्ना ने अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया और शांत स्वर में फुसफुसाया, मुझे तुम पर भरोसा है, मानो वो मुझसे यही कह रही हो। मैंने अन्ना का वजन और गर्माहट महसूस की और साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अंदर कुछ गर्म और कोमल सा महसूस हो रहा था। ओह, मैं समझा, मैं हूँ, मुझे अन्ना सचमुच पसंद है। पहले तो इसका एकमात्र कारण ये था कि मुझे खेल के पात्र पर दया आ रही थी, और जब मेरे पिछले जीवन की यादें वापस आईं, तो मुझे एक हल्की फुल्की उम्मीद हुई कि मैं अपनी माँ की मदद करते हुए खलनायक के साथ एक मौका पा सकता हूँ। मुझे शर्म आ रही है। मैं खुद को उस पल को याद करना चाहता हूँ जब मैं ऐसी ही किसी बात के बारे में सोच रहा था। क्या यह हेमी जैसा ही नहीं है? अन्ना तो अन्ना है। जिस प्रकार मैं और मेरी माँ किसी खेल के पात्र नहीं हैं, उसी प्रकार अन्ना भी स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति हैं। वह बहुत मेहनती है और उसमें जिम्मेदारी की गहरी भावना है, और वह इसके लिए जी जान से मेहनत करती है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि वह शर्मीली है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छी नहीं है। वह नाड़ी है, लेकिन जब वह मजे कर रही होती है तो वह मुस्कुराती है और बहुत अच्छी तरह से हंसती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे उस अन्ना से प्यार हो गया। टीएल, आखिरकार उसे अपनी भावनाओं का एहसास हो गया। लेकिन फिर भी मुझे अन्ना वाली पसंद है। किसी भी हालत में मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए था। इस तरह हम लोगों को लेकर ब्यूटर जहाज गर्मियों के ऊंचे आकाश में सहजता से उड़ता रहा। जब सूर्य पहाड़ों पर डूब रहा था तो हमारे साथ ब्यूटर जहाज एलवेन गांव में बने हवाई अड्डे पर उतरा। ओह एलन सान, स्वागत है। मैं हैं मानव शेरिल लॉरा सामा। हवाई अड्डे पर हमारा स्वागत करने आए कल्पित बॉ ने उस समय भ्रमित हो गए जब उन्होंने शेरिल लॉरा सान को रस्सियों में लिपटा हुआ और अन्ना को मेरे साथ देखा। आहा, बहुत सारी चीजें हुई और स्थिति ऐसी हो गई। मैं शेरिल लॉरा की रस्सी खोलते हुए ये कहकर उन्हें धोखा देने की कोशिश करता हूँ। देखिए शेरिल लॉरा सान, हम पहले से ही जमीन पर हैं। उफ, मैं अब हवा में लटकना नहीं चाहता। हाँ, जैसी कि उम्मीद थी, हवा में लटकना दयनीय था। इसलिए मैं अन्ना को हवा में लटकने नहीं दे सकता था। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, शेरिल लॉरा सान किसी तरह खड़ी हो गई और अकेले ही गांव की ओर चल दी। चलो चले अन्ना सामा। मैं अन्ना को खड़े होने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। ए एलन सान, वह इंसान कौन है? वह लेडी अनास्तासिया है, मेरी। ओह, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप तो पहले से ही उस उम्र में हैं, है ना एलन सान? जैसी कि उम्मीद थी, इंसान इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। फिर भी मैं महारानी की इजाजत लूंगा, ठीक है? जाहिर है मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने इसका समाधान कर दिया। हाँ, मुझे पता है, मैं महारानी के घर जा रहा हूँ। ये कहने के बाद मैंने कठोर चेहरे वाली अन्ना का हाथ पकड़ा, सिर हिलाया और उसे गांव में ले गया। ओह, यह एलन है। हम लगता है उसके साथ कोई अजनबी है। देखा, ये ठीक है क्या? उसे ग्रीष्म उत्सव में लाना, क्या यह उस तरह का रिश्ता है? मैं गांव के सभी कल्पित बौनों को जानता था, इसलिए जब मैं वहां से गुजरा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, वे अन्ना से सावधान लग रहे थे। मैंने उनका उचित ढंग से अभिवादन किया और गांव में सूर्यास्त होते ही महारानी के घर की ओर चल पड़ा। तारांकन 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 तारांकन। एलन सामा, लगता है शेरी ने जबरदस्ती कोई अनुरोध किया है। मुझे इसके लिए माफ करना। साथ ही उसकी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, मैं भी। शेरिल लॉरा सान को इस तरह हवा में लटकाने के लिए मुझे माफ करना। जब हमने एक दूसरे से क्षमा मांगी तो महारानी ने अपना ध्यान अन्ना की ओर लगाया। तो ये लड़की कौन है? हाँ, मैं आपको उनका परिचय करा दूं। वह लेडी अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट हैं, मेरी प्यारी महिला। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने अन्ना को घुटन भरी सांस लेते सुना। मैं देख रहा हूँ, ये व्यक्ति एलन सामा का है। रानी ने मूल्यांकनात्मक दृष्टि से अन्ना की ओर निर्दयता से देखा। अन्ना सामा, वह इस एल्फ गांव की रानी है। मैं अनास्तासिया हूँ, ड्यूक ऑफ रामस्लेट की बेटी। आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है महाराज। अन्ना ने महिला सुलभ शिष्टाचार का सुंदर प्रदर्शन किया। फुफू, मैं समझ गया, अनास्तासिया सान एक अच्छी जगह से आई युवती है। तो क्या आप समझते हैं कि एल्फ गांव क्यों बंद है? हाँ, मैं समझ गया। फिर यह जानते हुए भी आपने एलन सामा के साथ यहाँ आने का फैसला क्यों किया अनास्तासिया सान? अच्छा, वह तो मैं। इतना कहने के बाद अन्ना का चेहरा नीचे की ओर हो गया। एलन सामा, क्या आप हमें कुछ समय दे सकते हैं कृपया? ठीक है, तो अन्ना सामा, मैं बाहर रहूंगा। जब मुझे ये बताया गया तो मैं कमरे से बाहर निकल गया। उसके तुरंत बाद पर्वत और मेरी चांद मेरी ओर आए। एलन, ये कहते हुए वह मुझ पर झपटी और मैंने उसे पकड़कर उठा लिया। वैसे जब मैं उससे 4 साल पहले मिला था तब वह लगभग 3-4 साल की थी और अब भी वह लगभग वैसी ही दिखती है, बस थोड़ी बड़ी हो गई है। आमतौर पर कल्पित बौने लगभग 10 साल की उम्र तक इंसानों की तरह ही बढ़ते हैं, लेकिन मेरी चांद तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। और इसकी वजह है यह विकृत व्यक्ति। ऐसा लगता है कि इस विकृत व्यक्ति के साथ अनुबंध करने के कारण मेरी चांस का अस्तित्व उस विकृत व्यक्ति के अस्तित्व के और भी करीब आ गया है, या ऐसा मैंने सुना है। ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से एक योगिनी के रूप में उसका जीवन काल, जो आमतौर पर 500 से 1000 साल होता है, बढ़कर 10,000 से 1,00,000 साल हो जाएगा। मुझे इस बारे में पक्का यकीन नहीं है क्योंकि खेल में ऐसा कोई तथ्य नहीं था, लेकिन ये कल्पित बौनों के लिए एक खुशी की बात लगती है। इसके प्रमाण के तौर पर महारानी शेरिल लोरासान और गांव के बाकी सभी लोग मेरी चांद के लिए बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे। मैंने सोचा कितनी भयानक बात हुई, लेकिन मैंने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि मानवीय मूल्यों के आधार पर कल्पित बौनों के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं था। हालांकि इतनी लंबी उम्र के परिणाम स्वरूप शरीर का विकास भी उतना ही धीमा हो जाता है। मुझे लगता है कि यह विकृत व्यक्ति शुरू से यही चाहता था। क्या प्रकाश की आत्मा का इतना घटिया और लालची व्यक्ति होना ठीक है? एलन शी, बहुत समय हो गया मिलते हुए, तुम अब भी पहले की तरह ही विकृत हो। एलन शी भी हमेशा की तरह व्यंग्यात्मक है, तुम्हारे जितना नहीं। उफ, यदि प्रकाश की आत्मा ऐसी है तो ये दुनिया का अंत है। मैंने सुना है कि एलन शी अपनी पत्नी को यहाँ लाए थे, आपको उनमें क्या पसंद आया? अच्छा व्यक्तित्व, मैं उस छोटी बच्ची को देखने के लिए उत्सुक हूँ जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, जैसा कि एलन शी ने स्वीकार किया है। आप उसे जल्दी क्यों नहीं दिखाते? उद्धरण चिन्ह .. अगर मैं उसे तुम्हें दिखाऊंगा तो अन्ना कलंकित हो जाएगी। हम, क्या वह इतनी प्यारी छोटी बच्ची है? होह, जैसी कि एलन शी से उम्मीद थी, एक साथी जिसे मैं पहचानता हूँ। अन्ना कोई छोटी बच्ची नहीं है, और तुम मेरे साथ किसी साथी जैसा व्यवहार करने की हिम्मत मत करना। मुझे तुम्हारे शौक की एक भी बात समझ नहीं आती। शर्माओ मत, मेरी मिरी टैंग की प्रशंसा करने का ये तरीका, चाहे तुम कुछ भी सोचो, मेरे एक साथी का है। नहीं, आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, क्या उसके जैसी छोटी बच्ची को बिगाड़ना प्यारा नहीं है? अरे मुझे गले लगाओ। आह हाँ हाँ, एक बार तो मैंने उसे नीचे रख दिया, लेकिन जब उसने मुझे दोबारा पकड़ने को कहा तो मैंने उसे फिर से उठा लिया। लो, ये झूठा खुलासा है, तुम अभी भी बहुत परेशान करने वाले हो। मुझे इस विकृत व्यक्ति द्वारा उपहास किए जाने के कारण घोर अपमान का अनुभव हुआ। एलन, अन्ना, जो अंततः महारानी के कमरे से बाहर आई, ने मुझे डरते हुए पुकारा, जो मेरी चांद को गले लगाने के लिए उसे ऊपर उठाकर उसके पीछे बैठी थी। वह इतना भयभीत क्यों महसूस करती है? मैंने मेरी चांद को नीचे उतारा और अन्ना से उनका परिचय कराया। अन्ना सामा, वह महारानी मिरिल लेउरासामा की सबसे छोटी बेटी हैं। और फिलहाल वह चीज प्रकाश की आत्मा रोसामा है, जो फिलहाल उनके साथ अनुबंधित है। मैंने उस विकृत व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दो बार कहा, फिलहाल के लिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। फिलहाल से आपका क्या मतलब है? कितना असभ्य, अपरिचित विकृत व्यक्ति के विरोध को नजरअंदाज करते हुए मैं अन्ना को मेरी चांद से मिलवाता हूँ। मेरी चांद, ये व्यक्ति मेरी प्रिय महिला अनास्तासिया सामा है। मेरी चांद फिर अन्ना को घूरती है। अन्ना शालीनता से मेरी चांद का अभिवादन करती है। मेरा नाम अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट है। मेरे लेउरासामा और आपसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। अन्ना सरसरी तौर पर चारों ओर देखती है। एलन शी, क्या ये परिपक्व महिला आपकी दुल्हन है? और सामान्य लोग आत्माओं को नहीं देख सकते, क्या एलन शी यह भी भूल गए? फफ फुफो, वो बिगड़ेल आदमी तरह तरह की अभद्र बातें कह रहा है। अगर यही रोशनी की भावना है तो ये दुनिया का अंत है। मैं तुम्हें क्यों देख सकता हूँ? एल्फ एमुलेट के मालिक के रूप में एलन शी विशेष हैं। एलन शी एक मानद एल्फ हैं। जब मैंने उस विकृत व्यक्ति से फुसफुसाकर पूछा तो ऐसा जवाब आया, ऐसा लगता है कि आप कल्पित बौनों की मदद के बिना आत्माओं को नहीं देख सकते, लेकिन फिलहाल वह यहाँ है। हाँ, फिलहाल, ऐसा कहकर मैं उस विकृत व्यक्ति की ओर इशारा करता हूँ। अच्छा, ऐसा है। वह थोड़ी निराश दिखी और फिर, जैसे कि वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी, वह उस दिशा की ओर मुड़ी जिस ओर मैं इशारा कर रहा था और फिर से विनम्रतापूर्वक झुकी। प्रकाश की आत्मा रोसामा, मेरा नाम अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट है। हम, आप पहले से ही परिपक्व हैं, इसके बावजूद आप काफी आज्ञाकारी हैं, है ना? वैसे आप काफी बीबीए हैं। हम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है? ओह, क्या रैमस्लेट में क्लेनेल का इस्तेमाल रैमस्लेट के ड्यूक द्वारा नहीं किया जाता है? ओह ओह, टीएल, मुझे नहीं पता कि बीबीए क्या है। ये कहते हुए वह अन्ना के चारों ओर घूमी और उसके शरीर के हर इंच को ध्यान से देखा। अब जब मैंने ध्यान से देखा तो वह लिजा टैन जैसी लग रही है ना? हो सकता है ये लड़की अनास्तासिया गेरहार्ड और एलिजाबेथ की बेटी हो। क्या आप उससे परिचित हैं? मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे जानता हूं या नहीं, लेकिन यह मैं ही था जिसने लिजा तान को जादू सिखाया था जब वह एक छोटी बच्ची थी। उस समय लिजा तान एक देवदूत की तरह थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। यह आदमी, जैसा कि मैंने सोचा था, उसे यहां अलग थलग करना सही जवाब था। वैसे उसकी शादी और बच्चे के बाद से मैं उससे सिर्फ एक बार ही मिला हूं। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि जिस छोटी बच्ची को मैंने तब देखा था वो अब बीबीए बन चुकी है। मैं जरूर फेल हो गया हूँ। ओह, जब मैं उस बिगड़ेल से लगातार फुसफुसा रही थी और बातें कर रही थी अन्ना को मेरी चांद की घूरती नजरों से असहज महसूस हो रहा था, जबकि वो शालीनता से झुकी हुई थी। और फिर खुद को रोक ना पाने के कारण वो मुझसे मदद मांगती है।
हरे एलन, अन्ना सामा, तुम्हें कोई शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है।
और ठीक है मेरी चांद, अन्ना ओनी चांद कह रही है कि उसे गले लगाओ।
एह एलन, मेरे इतना कहते ही मेरी चांद मुस्कुराए और अन्ना को गले लगाने के लिए उसके पास गई।
अन्ना ने अजीब से चेहरे के भाव के साथ मेरी चांद को बेधगेपन से उठा लिया। एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर लड़की एक खूबसूरत युवा योगिनी को अपनी बाहों में लिए हुए है, और वह सुंदर युवा लड़की गोद में लिए जाने से बहुत खुश लग रही है। यह एक खूबसूरत दृश्य है, किसी पेंटिंग जैसा। बस इतना ही कि अन्ना के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था।
मेरी टैन भी मिलनसार हो रही है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बुरी नहीं है।
लेकिन एलन शी, क्या तुम कोई आम आदमी नहीं थे? उसमें गलत क्या है?
मैं समझ गया। अप्रत्याशित रूप से एलन शी को आग से खेलना पसंद है ना?
मैं समझ गया, तो क्या?
वाह
आह, बहुत परेशान करने वाला है।
तुम बहुत परेशान करने वाले हो, तुम बिगड़ेल हो।
धिक्कार है।
मैं जानता हूं कि मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए और उसे भी मुझे पसंद नहीं करना चाहिए।
अन्ना को अंततः राजनीतिक कारणों से विवाह करना ही होगा। हालांकि जिस व्यक्ति से उसे विवाह करना है वह युवराज नहीं होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से कोई उच्च पदस्थ कुलीन या विदेशी राजघराने जैसा व्यक्ति होगा।
अन्ना एक ऐसा फूल है जो मुझ आम आदमी को कभी नहीं मिलेगा। मुझे ऐसी चीज की कामना करने की भी इजाजत नहीं है।
और अभी तक, यद्यपि यह मेरी माँ को बचाने के लिए था, लेकिन इससे पहले कि मैं जान पाता, ऐसे और भी लोग थे जिन्हें मैं बचाना चाहता था, और मैं उन चीजों की कामना कर रहा था जो मुझे नहीं चाहिए थी।
धत्तेरी की, क्या उस नजर का यही मतलब है? क्या एलन शी उस लड़की के बारे में गंभीर है?
उफ, तुम मुझे सालों से विकृत कह रहे हो और अब तुम उससे प्यार करने लगे हो। क्या बदला चुकाने का यही एहसास होता है?
फुफुफुफुफु, अरे अरे, अब कैसा लग रहा है?
एनडीके,
गुननु, ये निराशाजनक है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकता।
खैर, जो भी हो, मैं भी कोई राक्षस नहीं हूं।
कोई बात नहीं, क्योंकि इस गांव के बाहर कोई जानकारी लीक नहीं होगी।
तुम्हें बस आज रात जो करना है वो करना है और तरोताजा होना है।
ये तो और भी बुरा है।
आह, मुझे माफ करना, मैंने अन्ना और मेरी चांद से इतनी जोर से चिल्लाने के लिए माफी मांगी।
लेकिन उस बिगड़ेल ने मुस्कुराते हुए, अन्ना ने शक भरे चेहरे से और मेरी चांद ने हैरानी भरे चेहरे से मुझे घूरा।
अगली सुबह हमने एल्फ गांव का जायजा लेने का फैसला किया, जो अपने दशक में एक बार होने वाले उत्सव के बीचों बीच था। कल बहुत अंधेरा था, इसलिए ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गांव के घर रंग बिरंगे फूलों और गहनों से सजे हुए थे और माहौल बहुत उत्सवी था। यदि आप सोच रहे हैं तो मैं एक अलग कमरे में सोया था। यद्यपि वह विकृत व्यक्ति मुझे उकसा रहा था, फिर भी मैंने उसे सहन किया और रात को बिस्तर से बाहर नहीं निकला।
खैर, मैं नहीं चाहता कि अन्ना मेरे बारे में बुरा सोचे। हो सकता है कि वह मुझे विपरीत लिंग के व्यक्ति के रूप में पसंद करती हो, बशर्ते मैं घमंडी न हो जाऊं। वैसे अगर मैंने हद पार कर दी तो वापस लेने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं इतनी दूर चला गया तो मैं खुद को रोक पाऊंगा। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ऐसा होने पर अन्ना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आएंगी, तो मेरा जवाब बिल्कुल नहीं होगा। अब तक अन्ना को देखते हुए मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हालांकि सुबह उठते और नाश्ता करते समय से ही एना के साथ कुछ गड़बड़ थी। वह थोड़ी अजीब सी थी, या ऐसा ही कुछ।
कुछ हुआ क्या? जब मैं अन्ना के साथ सड़क पर चल रहा था तो उसने मुझसे जो कुछ भी कहना चाहा कहा, लेकिन मैंने उचित उत्तर दिया।
क्या ये लड़की एलन सांग की है?
ये सही है, अन्ना सामा मेरी प्रिय महिला है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं नकार दूं।
ओह, क्या वह बहुत सुंदर नहीं है?
ओह, आश्चर्य की बात है। एलन चेहरा देखकर चुनाव करने वाला व्यक्ति था। उसने गांव के कल्पित बौनों की ओर देखा तक नहीं।
चलो, कैसा रहेगा? मैंने उसे उसके चेहरे की वजह से नहीं चुना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसे बताऊं कि मुझे अन्ना के अंदर से प्यार हो गया है तो वह यकीन करेगी। और हाँ, जब अन्ना मेरे बगल में खड़ी थी तो ये बात बताना थोड़ा शर्मनाक था। लेकिन फिर तुम्हें लड़की की रक्षा करनी होगी। यहाँ लड़की, वहाँ इधर आओ। जब अन्ना को बुलाया गया तो वह संदिग्ध लग रही थी, लेकिन युवा सुंदर योगिनी महिला जो 400 वर्ष से अधिक उम्र की रही होगी उसे एक इमारत में ले गई, और जल्द ही वह अपने सिर पर फूलों का मुकुट पहने हुए बाहर आ गई।
यह, ओह अन्ना सामा, यह आप पर बहुत जंचता है।
ओह ओह, शुक्रिया
एलन। और ओम, ये है, देखिए, इस उत्सव में एक पुरुष और एक महिला का एक साथ होना जरूरी है। लड़का जिस लड़की से प्यार करता है उसकी पूरी तरह से रक्षा करता है, और जो लड़की सुरक्षित रहती है और अंत तक मुकुट को सुरक्षित रखती है वह उसे उस लड़के को दे देती है जिससे वह प्यार करती है, और फिर आत्माएं उस लड़की को आशीर्वाद देती हैं और लड़का लड़की का विवाह हो जाता है।
टीएल।
अंत में उत्सव का जाल। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम होता है। इस साल 5 जोड़े भाग ले रहे हैं। वैसे चिंता मत करो, वे तुम पर सिर्फ फल फेंकेंगे। अब मुख्य चौक पर पहुंचो। ओह एलन, क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह से मूर्ख बन गया। किसी ने मुझे नहीं बताया था कि यह ऐसी घटना है, लेकिन फल भी चोट पहुंचा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ लगता है। अगर मैं अन्ना का चेहरा सूजा हुआ छोड़ दूं तो यह एक गंभीर बात होगी। तो मैंने अपना मन बना लिया। तारांकन 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 तारांकन, और जब हम बीच वाले चौक पर पहुंचे तो बाकी 4 समूह पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। कल्पित बौनों की तरह खूबसूरत पुरुष और महिलाएं वहां जमा थे। वे उम्र की परवाह किए बिना जोड़े लग रहे थे, नीचे 40 साल से लेकर ऊपर 500 साल तक के। तभी सुंदर संगीत गूंज उठा और हम उस पर नाचने लगे। भले ही इसे नृत्य कहा जाता है, मैंने तो बस अपने पैर हिलाए जैसा अन्ना ने मुझसे कहा था, इसलिए मुझे लगता है कि मैं वास्तव में नृत्य नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा था कि मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन अन्ना को अपनी बाहों में लेने का विचार तथा अन्ना की कोमल सुखद गंध जो मुझे अचानक महसूस हुई ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। क्या तुम्हें पता है मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं अन्ना को फलों से बचा सकता हूँ? प्रतियोगिता शुरू हो गई है। अगर मैं 1 घंटे तक अन्ना की रक्षा कर सकूं तो हम जीत जाएंगे। जब घंटियां बजी और हमले की शुरुआत का संकेत मिला तो अन्य 4 समूह अचानक जादू का उपयोग करते हुए तेज गति से भागने लगे। हाँ, मैं आश्चर्य से चीख पड़ा, लेकिन तुरंत ही अन्ना के अंधे स्थान से फल बहुत तेज गति से उड़ने लगे। अन्ना सामा, क्षमा करें, मैंने जल्दी से उसे बंद कर दिया और घबराहट में मैंने अन्ना को उसके बगल से उठाया और तुरंत भाग गया। अरे एलन, ये है। अन्ना घबराई हुई सी लग रही थी और मेरी बाहों में विरोध कर रही थी, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अन्ना सामा, हमें भागना होगा। फिर इस बार पानी के भाले हम पर उड़ते हुए आए और हमारा रास्ता रोक दिया। अरे रुको, मुझे लगा था कि तुमने हम पर सिर्फ फल ही फेंके हैं। जब तक आपको चोट नहीं लगती या आप कोई चीज नहीं तोड़ते, तब तक कुछ भी चलेगा। ऐसा मुझे उस योगिनी ने बताया जिसने जल जादू फेंका था। अगर ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैंने एक धुआंधार पर्दा बनाया और उसके गायब होने से पहले ही भागना शुरू कर दिया। फिर मैं गांव से भागा और एक इमारत के पीछे छिप गया। हा 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 हा, क्या हम उन्हें झटकने में कामयाब रहे? ओह ओह, वह एलन, मेरी बाहों में अन्ना शर्म से लाल होकर मुझे घूर रही है। उफ, कितना प्यारा है। मैं अन्ना को ऐसे ही देखता रहा और उसकी बेहुदी प्यारी अदाओं को देखकर दंग रह गया। हरे एलन, अच्छा ओम, मैं अपने आप चल सकता हूँ। ओह, मुझे माफ करना। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने जल्दी से अन्ना को नीचे उतार दिया और उसे खड़ा रहने दिया। और ओम, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। नहीं, मुझे भी, मुझे माफ करना। नहीं ओम, ठीक है, क्षमा करें। हाँ नहीं, मैं भारी क्यों नहीं था। अन्ना मुझसे कुछ ऐसा ही कहती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। TL, क्यूटनेस का ओवरडोज। क्या तुम्हारा यही इरादा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्ना मेरी बुद्धि को नष्ट करने के लिए ऐसा कर रही हो? ये बहुत विनाशकारी था कि ऐसा असंभव विचार मेरे दिमाग में आया। मैंने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और उसे नीचे धकेलने की इच्छा को रोका। नहीं अन्ना सामा इतना हल्का है कि घंटों तक ठीक रहता है। हाँ, कितने घंटे काम करोगे? किसी वजह से अन्ना घबरा गई और जोर से चिल्लाई। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं उसकी आवाज ने किसी का ध्यान तो नहीं खींचा। तभी मेरी नजर उस विकृत व्यक्ति पर पड़ी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और एक भद्दी मुस्कान थी, और न जाने क्यों बाकी आत्माएं एक के बाद एक इकट्ठा हो रही थीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह वाह वाह, मैंने सुना, मैंने सुना। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस बिगड़ेल व्यक्ति ने अचानक इशारे किए और अभिनय करते हुए हमारी नकल करके मेरा मजाक उड़ाया। हनी, क्या मैं भारी नहीं था? ओह मेरी परी, तुम कितनी हल्की हो। मैं तुम्हें ऐसे ही उठाकर 100 साल तक दौड़ा सकता हूँ। ओह हनी, ये तो अद्भुत है, उद्धरण चिन्ह। फिर उस विकृत व्यक्ति के चारों ओर एकत्रित हुई असंख्य आत्माओं ने उसके हाव भावों की नकल की और एक साथ मिलकर कार्य किया। था दैट, हरे एलन, कल्पित बौने हैं। जब अन्ना ने मुझे बताया और मैंने चारों ओर देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए कल्पित बौनों के एक समूह को अपने हाथों में अपनी पसंद का फल लेकर हमारी ओर आते देखा। चलो चलो भाग चलें। आह, मैंने अन्ना का हाथ खींचा और वहां से भाग गया। लेकिन इससे पहले कि हम भागते, एल्व्स मुस्कुरा रहे थे और अपने हाथों में फल लेकर हमारा इंतजार कर रहे थे। यहीं उधर मैंने अन्ना का हाथ फिर से खींचा और भाग गया, लेकिन कल्पित बौने अभी भी हमसे आगे थे, इसलिए हम इधर उधर भागने लगे, लेकिन अंततः हम दीवार से सटकर खड़े हो गए। धत्तेरी की, मैं कभी कभी फेंके गए फलों को हटाने के लिए वायु जादू का प्रयोग करता हूँ, उन्हें अपने हाथों से पकड़ता हूँ और कभी कभी अपने शरीर से अन्ना की रक्षा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जाता है। और सबसे बढ़कर उस मुस्कुराते हुए विकृत व्यक्ति ने मुझे दिल की गहराइयों से परेशान कर दिया। ये बहुत करीबी मुकाबला था एलन सान। खैर, आपने मुझे कुछ बहुत ही रोमांचक चीज दिखा दी है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दूंगा। हाँ हाँ, हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अब यह महज ईर्ष्या पर आधारित आरोप नहीं लगता, बल्कि आइए अन्ना की सुरक्षा के बारे में सोचें। हालांकि जब तक ये प्रतिबंध है कि आप चीजों को तोड़ नहीं सकते, मैं कीमिया के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तब तो एलन सान भी आपकी प्रेमिका को छोड़ देंगे और हमारे साथ 10 साल तक शोक मनाएंगे। हे, इसे सहन करो। ऐसा कहकर कल्पित बौनों ने अपने हाथों में बड़ी मात्रा में फल लिए और उन्हें एक के बाद एक फेंक दिया। पोंकुसुकुसु टीएल विकृत हंसी। वह मुस्कुराती हुई विकृत स्त्री मेरे सामने अपनी उंगली से इशारा करते हुए हंस रही है। अरे, वे आराम क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं सिर्फ अन्ना की ही रक्षा करूंगा। माफ करना अन्ना सामा। मैंने अन्ना को सीधे अपनी छाती से लगा लिया और उसे नीचे धकेल दिया। फल के हमले से बचने के लिए अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अरे एलन, अगर मैं समय समाप्त होने तक इसी तरह सहन कर सकता हूँ तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ अन्ना सामा। एलन, अरे मूर्ख मत बनो। मन, ओह मन, सभी चीजों का स्रोत। मेरी आज्ञा का पालन करो और बर्फ बन जाओ और उसका रूप ले लो। बर्फ का ताबूत। जब अन्ना ने अपना बर्फ का जादू सक्रिय किया तो एक बर्फ का ताबूत बन गया, जिसने हमें पूरी तरह से अपने चारों ओर लपेट लिया। स्वाभाविक रूप से ये बर्फ है, इसलिए यह बहुत ठंडा है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तब तक सहन करोगे जब तक समय खत्म नहीं हो जाता? अगर इसके लिए तुम्हें पीटा जाए तो क्या फायदा? लेकिन अन्ना सामा, अन्ना, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। महारानी ने मुझे बताया है कि इस एल्फ गांव में, इंसानों की दुनिया में तुम्हारी हैसियत क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें पता है, ठीक है, जब तक तुम इस गांव में हो। अन्ना की आवाज, जो पहले तो बहुत वाकपटु थी, धीरे धीरे धीमी होती गई और फिर धीरे धीरे गायब होती गई, और फिर उसी अनुपात में उसके क्रोध की प्रारंभिक अभिव्यक्ति शर्म में बदल गई। अन्ना सामा, नहीं अन्ना, वह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, आह, बर्फ के ताबूत के अंदर हम एक दूसरे को घूरते रहते हैं, बाहर देख रहे कल्पित बौनों और आत्माओं से बेखबर। तब दस्तक दस्तक, बर्फ के ताबूत पर दस्तक की आवाज सुनकर हम घबरा गए और अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। साफ बर्फ के बाहर एक परेशान सी रानी हमें घूर रही थी। हमारे आसपास के कल्पित बौनों के पास अब कोई फल नहीं बचा था। अच्छा अन्ना, एलन, ओह, अन्ना शर्मिंदगी से दूसरी ओर देखने लगती है और फिर बर्फ के ताबूत का जादू तोड़ देती है। टल क्यूटनेस ओवरडोज। तभी पास ही खड़ी शेरिल लौरा सान ने हम पर फल फेंके, लेकिन मैं इस हरकत से चूका नहीं। मैंने अन्ना को बचाने के लिए अपना शरीर घुमाया और फल को अपने चेहरे पर लगा लिया। लाल फल का रस मेरे चेहरे पर चिपक गया और उसकी मीठी खुशबू से मेरी नजरें छिप गईं। और अगले ही पल मुझे अंत का संकेत देने वाली घंटियों की आवाज सुनाई दी। शेरिल लौरा सान, हमम, आपने अंत तक अपना बचाव बनाए रखने का अच्छा काम किया। एलन, मुझे माफ करना, मैंने अपनी सावधानी कम कर दी। नहीं नहीं, यह मैं था, लेकिन मैंने आपकी रक्षा करने का अच्छा काम किया। जब मैंने ऐसा कहा तो अन्ना हंसने लगी और फिर खुश होकर बोली, धन्यवाद मेरे शूरवीर। तारांकन 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 तारांकन। फलों के रस में भीगे होने के बावजूद जब हम अन्ना के मुकुट को बचाने में सफल रहे तो हमने केंद्रीय चौक में अन्य प्रतिभागियों से मुलाकात की जो फलों के रस में भीगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि 4 में से 2 जोड़े महिलाओं की रक्षा करने में नाकाम रहे। हालांकि वे इतने दुखी नहीं दिख रहे थे और एक दूसरे को अगली बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मुझे लगा कि वे अगली प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार अलग अलग जीवनकाल आपको समय की एक बहुत ही अलग समझ देते हैं, ऐसा मैंने सोचा। अब अन्य 2 जोड़ों के लिए महिला पुरुष को फूलों का मुकुट देती है और फिर माथे पर चुंबन देती है। जिस पुरुष ने उसे प्राप्त किया उसने फूलों के मुकुट पर एक चुंबन गिराया, उसे फिर से स्त्री के सिर पर रखा और फिर उसके होठों को चूमा, या यूं कहें कि उसे गहराई से चूमा। फिर उनके चारों ओर आत्माएं चमक उठी और प्रकाश की वर्षा करने लगी। ओह अद्भुत, की चुंबन डी डू इन द दैट। ऐसा लगता है कि मैं, जो आत्माओं को देख सकता हूँ, और अन्ना, जो नहीं देख सकती, चीजों को अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। अन्ना, अगर तुम आगे नहीं जाना चाहती तो तुम बस चुंबन का नाटक कर सकती हो। जब मैंने ऐसा कहा तो उसने मुझे घूर कर देखा और ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मेरे पैर पर पैर रख देगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था, यह अनुचित है। खैर, अंततः हमारी बारी आई। मैं अन्ना के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अन्ना ने मुझे अपना फूलों का मुकुट दिया, जिसे मैंने लेकर आंखें बंद कर ली। और एक हल्की सी चीख के साथ उसने मेरे माथे पर धीरे से चुंबन किया। मैं खड़ा हुआ और फूलों के मुकुट को चूमा और उसे अन्ना को पहना दिया। क्या आपको इसके बारे में यकीन है? ये दोहराव है, अगर आप पुरुष हैं तो तैयार रहें। हाँ, इना अपनी आंखें बंद कर लेती है, थोड़ा ऊपर देखती है और अपने होंठ फुला लेती है। मैं उसके खूबसूरत गुलाबी होंठों पर एक हल्का सा चुंबन देता हूँ। मैंने उसके होंठ चूसे और फिर अपनी जीभ डालकर अन्ना के दांतों पर हल्के से थपथपाए। फिर अन्ना ने भी अपनी जीभ मुझसे लिपटा ली। हमारा पहला चुंबन एक बहुत ही मीठे लेकिन अपरिचित लाल फल की खुशबू से भरा हुआ था। हमारे साथ ऐसी स्थिति में आत्माएं भी प्रकाश की वर्षा कर रही थीं। फिर मेरे और अन्ना के होंठ हमेशा के लिए अलग हो गए और अन्ना ने ऊपर की ओर थोड़ा परेशान चेहरे से मेरी तरफ देखा। फिर अगले ही पल अन्ना की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने इधर उधर देखा। ये प्रकाश क्या है? यह आत्माओं का आशीर्वाद है। ये है, अन्ना उस दृश्य की विशुद्ध कल्पना से मंत्रमुग्ध हो गई। और फिर वह विकृत आदमी अंदर आया, अनास्तासिया, एलिजाबेथ और गेरहार्ड की बेटी। ये क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सामान्य लहजे में बात कर सकता है। तुम हो, मैं प्रकाश की आत्मा रो और निस्वार्थ बुद्धिमान ऋषि लोरिंगस हूँ। निस्वार्थ है ना? लगता है इस आदमी ने उस विकृत आदमी की कामेच्छा को और भी गाढ़ा कर दिया है। और तो और, क्या तुम खुद भी ऐसी शर्मनाक बात कहोगे? लोरिंगस सामा, ओह लोरिंगस सामा, मुझे आश्चर्य हुआ कि अन्ना इतनी प्रभावित क्यों थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह विकृत व्यक्ति एलिजाबेथ सांग का जादू शिक्षक था। हाँ अनास्तासिया, मैंने तुम्हारा दृढ़ संकल्प और प्रेम देखा है। मैं तुम्हें अपना पवित्र आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उस बिगवेल ने अजीब तरह से दूर और नाटकीय लहजे में ये कहा और अपना हाथ अन्ना के सिर पर रख दिया। फिर अन्ना का शरीर कोमल गर्म रोशनी में लिपट गया। अब मैं शायद इस दृश्य को मृत आंखों से देख रहा हूँ। जब तक तुम उस प्यार को नहीं खोती, रोहो और लोरिंगस की आत्मा की रोशनी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। अनास्तासिया, कृपया मेरे लिए एलन का ख्याल रखना। ओह रोज सामा, लोरिंगस सामा, हाँ हाँ धन्यवाद। अन्ना इतनी भावुक हो गई कि उसने उत्साह के आंसू बहाए और आत्माएं उसके चारों ओर उड़ गईं, मानो उसे बधाई दे रही हों, और उसके चारों ओर जगमगाती अद्भुत रोशनियां नाचने लगीं। मैं इस सुंदर दृश्य को अवर्णनीय जटिल भावनाओं के साथ देखता रहा। लेकिन इससे पहले कि हम भागते, एल्व्स मुस्कुरा रहे थे और अपने हाथों में फल लेकर हमारा इंतजार कर रहे थे। यहीं उधर मैंने अन्ना का हाथ फिर से खींचा और भाग गया, लेकिन कल्पित बौने अभी भी हमसे आगे थे, इसलिए हम इधर उधर भागने लगे, लेकिन अंततः हम दीवार से सटकर खड़े हो गए। धत्तेरी की, मैं कभी कभी फेंके गए फलों को हटाने के लिए वायु जादू का प्रयोग करता हूँ, उन्हें अपने हाथों से पकड़ता हूँ और कभी कभी अपने शरीर से अन्ना की रक्षा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जाता है। और सबसे बढ़कर उस मुस्कुराते हुए विकृत व्यक्ति ने मुझे दिल की गहराइयों से परेशान कर दिया। ये बहुत करीबी मुकाबला था एलन सान। खैर, आपने मुझे कुछ बहुत ही रोमांचक चीज दिखा दी है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दूंगा। हाँ हाँ, हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अब यह महज ईर्ष्या पर आधारित आरोप नहीं लगता, बल्कि आइए अन्ना की सुरक्षा के बारे में सोचें। हालांकि जब तक ये प्रतिबंध है कि आप चीजों को तोड़ नहीं सकते, मैं कीमिया के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एलन सान भी आपकी प्रेमिका को छोड़ देंगे और हमारे साथ 10 साल तक शोक मनाएंगे। हे, इसे सहन करो। ऐसा कहकर कल्पित बौनों ने अपने हाथों में बड़ी मात्रा में फल लिए और उन्हें एक के बाद एक फेंक दिया। पोंकुसुकुसु टीएल विकृत हंसी। वह मुस्कुराती हुई विकृत स्त्री मेरे सामने अपनी उंगली से इशारा करते हुए हंस रही है। अरे, वे आराम क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं सिर्फ अन्ना की ही रक्षा करूंगा। माफ करना अन्ना सामा। मैंने अन्ना को सीधे अपनी छाती से लगा लिया और उसे नीचे धकेल दिया। फल के हमले से बचने के लिए अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अरे एलन, अगर मैं समय समाप्त होने तक इसी तरह सहन कर सकता हूँ तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ अन्ना सामा। एलन, अरे मूर्ख मत बनो। मन, ओह मन, सभी चीजों का स्रोत, मेरी आज्ञा का पालन करो और बर्फ बन जाओ और उसका रूप ले लो। बर्फ का ताबूत। जब अन्ना ने अपना बर्फ का जादू सक्रिय किया तो एक बर्फ का ताबूत बन गया, जिसने हमें पूरी तरह से अपने चारों ओर लपेट लिया। स्वाभाविक रूप से ये बर्फ है, इसलिए यह बहुत ठंडा है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तब तक सहन करोगे जब तक समय खत्म नहीं हो जाता। अगर इसके लिए तुम्हें पीटा जाए तो क्या फायदा? लेकिन अन्ना सामा, अन्ना, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। महारानी ने मुझे बताया है कि इस एल्फ गांव में, इंसानों की दुनिया में तुम्हारी हैसियत क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें पता है, ठीक है, जब तक तुम इस गांव में हो। अन्ना की आवाज, जो पहले तो बहुत वाकपटु थी, धीरे धीरे धीमी होती गई और फिर धीरे धीरे गायब होती गई, और फिर उसी अनुपात में उसके क्रोध की प्रारंभिक अभिव्यक्ति शर्म में बदल गई। अन्ना समा, नहीं अन्ना, वह है, आह, बर्फ के ताबूत के अंदर हम एक दूसरे को घूरते रहते हैं, बाहर देख रहे कल्पित बौनों और आत्माओं से बेखबर।
तब दस्तक दस्तक, बर्फ के ताबूत पर दस्तक की आवाज सुनकर हम घबरा गए और अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। साफ बर्फ के बाहर एक परेशान सी रानी हमें घूर रही थी। हमारे आसपास के कल्पित बौनों के पास अब कोई फल नहीं बचा था।
ओह अच्छा अन्ना, एलन, ओह
अन्ना शर्मिंदगी से दूसरी ओर देखती है और फिर बर्फ के ताबूत का जादू तोड़ देती है।
टल क्यूटनेस ओवरडोज।
तभी पास ही खड़ी शेरिल लौरा सान ने हम पर फल फेंके, लेकिन मैं इस हरकत से चूका नहीं। मैंने अन्ना को बचाने के लिए अपना शरीर घुमाया और फल को अपने चेहरे पर लगा लिया। लाल फल का रस मेरे चेहरे पर चिपक गया और उसकी मीठी खुशबू से मेरी नजरें छिप गईं। और अगले ही पल मुझे अंत का संकेत देने वाली घंटियों की आवाज सुनाई दी।
शेरिल लौरा सान, हमम, आपने अंत तक अपना बचाव बनाए रखने का अच्छा काम किया।
एलन, मुझे माफ करना, मैंने अपनी सावधानी कम कर दी।
नहीं नहीं, यह मैं था, लेकिन मैंने आपकी रक्षा करने का अच्छा काम किया।
जब मैंने ऐसा कहा तो अन्ना हंसने लगी और फिर खुश होकर बोली,
धन्यवाद मेरे शूरवीर।
तारांकन 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 तारांकन। फलों के रस में भीगे होने के बावजूद जब हम अन्ना के मुकुट को बचाने में सफल रहे तो हमने केंद्रीय चौक में अन्य प्रतिभागियों से मुलाकात की जो फलों के रस में भीगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि चार में से दो जोड़े महिलाओं की रक्षा करने में नाकाम रहे। हालांकि वे इतने दुखी नहीं दिख रहे थे और एक दूसरे को अगली बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मुझे लगा कि वे अगली प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार अलग अलग जीवनकाल आपको समय की एक बहुत ही अलग समझ देते हैं, ऐसा मैंने सोचा। अब अन्य दो जोड़ों के लिए महिला पुरुष को फूलों का मुकुट देती है और फिर माथे पर चुंबन देती है। जिस पुरुष ने उसे प्राप्त किया उसने फूलों के मुकुट पर एक चुंबन गिराया, उसे फिर से स्त्री के सिर पर रखा और फिर उसके होठों को चूमा, या यूं कहें कि उसे गहराई से चूमा। फिर उनके चारों ओर आत्माएं चमक उठी और प्रकाश की वर्षा करने लगी।
ओह अद्भुत, की चुंबन, डी डूइंग द दैट।
ऐसा लगता है कि मैं जो आत्माओं को देख सकता हूं और अन्ना जो नहीं देख सकती चीजों को अलग अलग तरह से महसूस करते हैं।
अन्ना, अगर तुम आगे नहीं जाना चाहती तो तुम बस चुंबन का नाटक कर सकती हो।
जब मैंने ऐसा कहा तो उसने मुझे घूर कर देखा और ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मेरे पैर पर पैर रख देगी।
मैं तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था, यह अनुचित है।
खैर अंततः हमारी बारी आई। मैं अन्ना के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अन्ना ने मुझे अपना फूलों का मुकुट दिया जिसे मैंने लेकर आंखें बंद कर ली। और एक हल्की सी चीख के साथ उसने मेरे माथे पर धीरे से चुंबन किया। मैं खड़ा हुआ और फूलों के मुकुट को चूमा और उसे अन्ना को पहना दिया।
क्या आपको इसके बारे में यकीन है?
ये दोहराव है, अगर आप पुरुष हैं तो तैयार रहें।
हाँ, इना अपनी आंखें बंद कर लेती है, थोड़ा ऊपर देखती है और अपने होंठ फुला लेती है।
मैं उसके खूबसूरत गुलाबी होंठों पर एक हल्का सा चुंबन देता हूँ। मैंने उसके होंठ चूसे और फिर अपनी जीभ डालकर अन्ना के दांतों पर हल्के से थपथपाए। फिर अन्ना ने भी अपनी जीभ मुझसे लिपटा ली। हमारा पहला चुंबन एक बहुत ही मीठे लेकिन अपरिचित लाल फल की खुशबू से भरा हुआ था। हमारे साथ ऐसी स्थिति में आत्माएं भी प्रकाश की वर्षा कर रही थीं। फिर मेरे और अन्ना के होंठ हमेशा के लिए अलग हो गए और अन्ना ने ऊपर की ओर थोड़ा परेशान चेहरे से मेरी तरफ देखा। फिर अगले ही पल अन्ना की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने इधर उधर देखा।
ये प्रकाश क्या है?
यह आत्माओं का आशीर्वाद है,
ये है।
अन्ना उस दृश्य की विशुद्ध कल्पना से मंत्रमुग्ध हो गई और फिर वह विकृत आदमी अंदर आया, अनास्तासिया, एलिजाबेथ और गेरहार्ड की बेटी।
ये क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सामान्य लहजे में बात कर सकता है।
आप हैं, मैं प्रकाश की आत्मा रो और निस्वार्थ बुद्धिमान ऋषि लोरिंगस हूँ।
निस्वार्थ है ना,
लगता है इस आदमी ने उस विकृत आदमी की कामेच्छा को और भी गाढ़ा कर दिया है।
और तो और, क्या तुम खुद भी ऐसी शर्मनाक बात कहोगे?
लोरिंगस सामा, ओह लोरिंगस सामा। मुझे आश्चर्य हुआ कि अन्ना इतनी प्रभावित क्यों थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह विकृत व्यक्ति एलिजाबेथ सान का जादू शिक्षक था।
हाँ अनास्तासिया, मैंने तुम्हारा दृढ़ संकल्प और प्रेम देखा है, मैं तुम्हें अपना पवित्र आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।
उस बिगवेल ने अजीब तरह से दूर और नाटकीय लहजे में ये कहा और अपना हाथ अन्ना के सिर पर रख दिया। फिर अन्ना का शरीर कोमल गर्म रोशनी में लिपट गया। अब मैं शायद इस दृश्य को मृत आंखों से देख रहा हूँ।
जब तक तुम उस प्यार को नहीं खोते, रोहो और लोरिंगस की आत्मा की रोशनी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी।
अनास्तासिया, कृपया मेरे लिए एलन का ख्याल रखना।
ओह रो सामा, लोरिंगस सामा।
हाँ हाँ धन्यवाद।
अन्ना इतनी भावुक हो गई कि उसने उत्साह के आंसू बहाए और आत्माएं उसके चारों ओर उड़ गई मानो उसे बधाई दे रही हों, और उसके चारों ओर जगमगाती अद्भुत रोशनियां नाचने लगीं।
मैं इस सुंदर दृश्य को अवर्णनीय जटिल भावनाओं के साथ देखता रहा।
उसके बाद एल्फ गांव ऊपर से नीचे तक उथल पुथल में था। प्रकाश की आत्मा ने एक मानव स्त्री को आशीर्वाद दिया। दशक में एक बार मनाए जाने वाले इस ग्रीष्मकालीन उत्सव में, जिसे सभी ग्रामीण मनाते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे ये पता न हो कि क्या हुआ था। इस एक मामले से अन्ना को गांव के कल्पित बौनों ने पूरी तरह से पहचान लिया और स्वीकार कर लिया। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन एलन सामा और अनास्तासिया सान को बधाई। महामहिम हमें बधाई देती हैं। था धन्यवाद। हम फिर भी आप एक अच्छी जोड़ी हैं, है ना? शेरिल लॉरा सान भी, हम शादीशुदा तो नहीं हैं, है ना? बधाई हो तुम्हें। धन्यवाद। खैर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अन्ना और मैं अब पूरी तरह से पति पत्नी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मुझे बाद में पता चला कि यह आयोजन असल में एक योगिनी विवाह जैसा था। टीएल, बधाई हो। ओ, हालांकि कल्पित बौनों में विवाह की अवधारणा मनुष्यों जैसी नहीं होती। यदि वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो वे साझेदार बन जाते हैं और एक दंपति जैसा रिश्ता बना लेते हैं, और यदि वे एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते तो वे अलग हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रीष्मकालीन उत्सव के आयोजन के बाद ऐसा नहीं होता है, और इस आयोजन में भाग लेना बच्चे पैदा करने की इच्छा का संकेत है। और जब मैंने पूछा कि उन लोगों का शोक मनाने से क्या मतलब है, तो ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसी भूमिकाएं तय करके मजे ले रहे हैं। दरअसल मैंने सुना है कि उनमें से एक का एक साथी और एक बच्चा भी है, और चूंकि हमने इसमें कूदकर ऐसी घटना पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कल्पित बौनों ने सोचा कि हम बहुत करीब थे। और जब बात इंसानों के बच्चे पैदा करने की आती है तो इसका मतलब है कि हम शादीशुदा हैं। ये सोचकर कि हम शादीशुदा हैं, वे हमें बधाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ शब्द कहने दीजिए। यदि यह इतना महत्वपूर्ण है तो पहले कहो, अन्ना ने मुझसे कहा। कौन ऐसा है? अरे एलन, मुझे ये गांव बहुत पसंद है। यहाँ के कल्पित बौने और आत्माएं सभी खुश लग रहे हैं। क्या ऐसा है? यहाँ कोई राजघराना या कुलीन वर्ग नहीं है जो लोगों से कर वसूले और उस धन का इस्तेमाल विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए करे। सभी समान हैं। हाँ, मनुष्य ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये कहते हुए अन्ना के चेहरे पर बहुत दुख था। अलाव के चारों ओर जीवंत संगीत गूंज रहा था और कल्पित बौने और आत्माएं खुशी से नाच और गा रही थीं। शेरिल लॉरा सान, जो कल्पित बौनों के गांव की राजकुमारी मानी जाती है, दूसरों के साथ घेरे में खुशी से नाच रही थी। वहां कोई हैसियत की बाधा जैसी कोई चीज नहीं थी। शेरिल लॉरा नाम की केवल एक ही एल्फ है। वास्तव में राजा क्या है और अभिजात क्या है? अन्ना, कल्पित बौनों के गांव में एक रानी भी है। हालांकि वह कोई भी फैसला जबरदस्ती नहीं लेती, बल्कि जब कोई परेशानी होती है तो मध्यस्थ की भूमिका निभाती है, या जब कोई बाहरी दुश्मन सामने आता है, जो कि बहुत कम होता है, तो कुछ करती है। ऐसा कोई युवराज नहीं है जो आदेश देने के लिए अपने पद का उपयोग करता हो। लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्यों के लिए यह अभी भी असंभव है। इना उदास होकर बुदबुदाई और अपना सिर मेरे सिर पर टिका दिया। मैंने उसके कंधे पकड़े और उसे धीरे से सहारा दिया। अरे एलन, क्या मैं यहाँ सिर्फ अनास्तासिया बन सकती हूँ, डचेस ऑफ रैम्सलेट नहीं? हाँ, प्यार, स्नेह और सुरक्षा की भावना मेरे दिल से आती है। तो फिर क्या एलन सिर्फ एलन ही रहेगा, सामान्य एलन नहीं? अन्ना नम आंखों से मेरी ओर देख रही है, मानो वह मुझसे चिपकी हुई हो। मैं उसके होठों को ढकने से खुद को रोक नहीं सका। वह समय अनंत काल जैसा लग रहा था। तो एल्वेस गांव में रात हो जाती है। यह एक ऐसे घने जंगल में है जहां इंसान कभी नहीं जा सकता। हर 10 साल में एक बार नए जोड़े के जन्म का जश्न मनाने के लिए आनंदमय संगीत और नृत्य बजाया जाता है। और उस रात मैं और अन्ना टील को तसुकुरी तारांकन 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 तारांकन। जब मैं उठा तो मुझे अपने बाएं हाथ में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ओह, ये सही है। और मैं उस महत्वपूर्ण अस्तित्व के बारे में सोचता हूँ जो इसका कारण भी है। वह मेरे बाएं हाथ को तकिए की तरह लिए हुए शांति से सोती है, और मेरे मन में दो परस्पर विरोधी भावनाएं उठती हैं, उसे हमेशा देखते रहने की इच्छा और यह एहसास कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब मैं इस समस्या से जूझ रहा था और सोच रहा था कि क्या मुझे उसे जगाना चाहिए, तभी अन्ना जाग गई। आह, जैसे ही उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं, वह चमकीली लाल हो जाती है और फिर नीचे देखने लगती है। सुप्रभात अन्ना जी। गुड मॉर्निंग एलन, उसके जवाब देने के बाद अन्ना चुप हो गई। अन्ना उठो। ओह ओम, हाँ, मुझे कपड़े पहनने की जरूरत है। टीएल, भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। कोष्टक। ऐसा कहकर अन्ना बिस्तर से उठी और धीरे धीरे अजीब चाल से अपने सामान की ओर चली गई, मानो वह किसी ऐसी चीज की रक्षा कर रही हो जो अन्ना के लिए सामान्य नहीं थी। मैं अन्ना के साथ गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक खूबसूरत फव्वारे के पास आया। स्वच्छ जल से भरे फव्वारे के चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं, तथा आत्माएं इसके चारों ओर उड़ रही हैं, जिससे एक बहुत ही रहस्यमय वातावरण बन रहा है। इन सब के बीच मैं अपना मुंह खोलने का साहस जुटाता हूँ। अन्ना, तुम देख रही हो क्या? खैर तुम्हें पता है कल के बारे में। जैसे ही मैंने ये कहा सिंदूर तुरंत अन्ना के चेहरे पर फैल गया।
क्या अब मुझसे माफी मत मांगो? ठीक है,
मैं अपना सिर हिलाता हूँ और अन्ना के सामने घुटने टेक देता हूँ, जो घबराए हुए अंदाज में ये कहती है।
अन्ना, मुझे नहीं पता कि यह कब होगा, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ड्यूक मुझे पहचान ले ताकि मैं अन्ना को लेने आ सकूं।
और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए कृपया मुझसे शादी कर लो, भले ही क्रम उलट हो।
मैंने ऐसा कहा और विकल्प अंगूठी आगे बढ़ा दी। अन्ना ने बारी बारी से मेरे चेहरे और मेरे द्वारा दी गई अंगूठी को देखा और फिर वहां आंसू बहाने लगी।
हाँ, जब उसने ऐसा कहा तो मैंने धीरे से उसकी बाई अनामिका उंगली में सब्स्टिट्यूट रिंग पहना दी।
टीएल, हाँ, एलन पूरी तरह से दृढ़ है, अब दुनिया उसकी असली ताकत देखेगी।
उस दोपहर हमने ब्यूटर से उड़ान भरी और अन्ना के साथ नजदीकी संपर्क में रहते हुए शाही राजधानी की उड़ान का आनंद लिया। यह आखिरी बार था जब हम अपनी पहचान भूल पाए थे, इसलिए हमने आसमान से नज़ारे का आनंद लिया।
संयोग से एल्फ क्वीन ने हमारे जाने से ठीक पहले अन्ना को एक आभूषण दिया था जिसे परी के बालों का आभूषण कहते हैं। इससे अन्ना भी अकेले ही खोए हुए जंगल से गुजर सकेगी, हालांकि वह शायद इसका कभी उपयोग नहीं करेगी। ये वही चीज़ है जो एमी को शुरू में मिलनी थी, लेकिन मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कल्पित बौने का गांव एमी और बाकियों को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वहां कोई राक्षस नहीं है, और अगर एमी और बाकियां खोए हुए जंगल में चले गए तो राजकुमार और बाकियां खो जाएंगे।
क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे बहुत सारी समस्याएं एक साथ हल हो जाएंगी?
खैर जो भी हो,
ओह हाँ, उस बिगवेल ने बहुत देर तक बिल्कुल बिल्ली की तरह अपना व्यवहार बदला, शायद इसलिए क्योंकि एना उसे देख पा रही थी। लेकिन जब उसने मेरे कान में कहा क्या तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें अच्छा लगा, तो मैं लगभग चिल्ला पड़ी, लेकिन खुद को रोक पाई। हमेशा की तरह वो विकृत व्यक्ति विकृत ही रहेगा, लेकिन मैं इसके लिए आभारी हूँ।
टी एल संभवतः सलाह का संदर्भ देते हुए। इसके अलावा चून की खेल में एमी को दिया जाने वाला पवित्र आशीर्वाद अन्ना को दे दिया गया था, इसलिए एमी के संत बनने का रास्ता जरूर खो गया होगा।
अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि एमी, जो एक साधारण बैरोनेस है और संत नहीं है, के लिए इस दुनिया में जहां एक पत्नीत्व का नियम है रिवर्स हरम के लक्ष्य तक पहुंचना अब संभव नहीं है।
सीधे शब्दों में कहें तो एमी पहले ही पानी में फंस चुकी है,
और ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूं।
खैर अगले दिन जब मैंने अन्ना को ड्यूक के निवास पर वापस भेज दिया तो जैसी की उम्मीद थी ड्यूक ने मुझे बुला लिया।
अब एलन तुम्हें पता है कि तुम यहां क्यों हो, है ना?
हाँ, तो फिर समझाओ उस अंगूठी का क्या मतलब है? मेरी बेटी ने अपनी बाई अनामिका उंगली में वह अंगूठी क्यों पहनी है?
यह मेरी तरफ से उसे उपहार है।
जैसे ही मैंने ये कहा ड्यूक के चेहरे पर गुस्सा उभर आया।
अरे मूर्ख, क्या तुम भूल गए कि द्वंद्व युद्ध के दौरान मैंने तुम्हारा साथ दिया था और शाही परिवार से तुम्हारी रक्षा की थी?
लेकिन ये प्रतिक्रिया मेरी उम्मीदों के अनुरूप ही थी।
क्या यह आपसी सहमति नहीं है, या आप ये चाहेंगे कि अनास्तासिया सामा को इस क्रूर तरीके से पराजित किया जाए और ड्यूक के सम्मान को कलंकित किया जाए?
चुप रहो, तुम एक आम आदमी हो और मेरी बेटी एक कुलीन है, और वह रैम्सलेट के ड्यूक की बेटी है,
किसी कुलीन की बेटी नहीं।
हाँ, इसीलिए मैंने उसे वह अंगूठी दी थी। उस समय ड्यूक इस तरह से भ्रमित दिखे जैसे कि उन्हें अचानक से पकड़ लिया गया हो, और फिर वे पुनः क्रोधित हो गए।
बहुत बढ़िया, यह उन दर्जनों पैटर्न में से एक है जिनकी मैंने कल्पना की है।
बेवकूफी भरी बातें मत करो, तुम कहते हो कि ड्यूक की बेटी एक आम आदमी द्वारा दी गई अंगूठी पहनती है, और वह भी अपनी बाई अनामिका उंगली में।
ये प्रतिक्रिया भी उम्मीद के मुताबिक ही है, अब इसे ठंडा करने का समय आ गया है।
ड्यूक, वह अंगूठी सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये प्रतिस्थापन अंगूठी है, एक महाकाव्य स्तर का आभूषण।
यह एक विशेष आभूषण है कि अगर अंगूठी पहनने वाली की मृत्यु हो जाती है तो अंगूठी उसकी जगह ले लेगी और एक बार के लिए उसकी जान बचाएगी।
इसके अलावा मैं हमेशा अनास्तासिया सामा की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने अनास्तासिया सामा के प्रति अपनी भावनाओं के प्रतीक के रूप में उसे उसकी बाई अनामिका उंगली में अंगूठी दी।
क्या महान ग्रेड, आप कहते हैं, पृथ्वी पर आपको ऐसा कैसे मिला?
ड्यूक को जब ये पता चला कि मैंने जो अंगूठी उसे दी थी वह एक महाकाव्य स्तर का आभूषण है जिसे राजा को पहनना चाहिए था, तो वह विषय से भटक गया।
ये पैटर्न भी मान लिया गया है, अगर ऐसा है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने पवन पर्वत के प्रसिद्ध तहखाने में गोता लगाया और उसे स्वयं पाया।
क्या पवन पर्वत की कालकोठरी, क्या ये सबसे कठिन कालकोठरी नहीं है जिसके केवल 8 स्तर अभी भी जीते जाने बाकी हैं?
मुझे यह विंड माउंटेन डंगोन की 28वीं मंजिल पर तैरते हुए टापू के बनावटी तल में एक छिपे हुए कमरे से मिला।
28वीं परत?
हाँ, विंड माउंटेन डंगोन में 30 स्तर हैं और अंतिम स्तर का बॉस एक बर्फीला तूफान फीनिक्स है।
बर्फीला तूफान फीनिक्स, मुझे मत बताओ कि तुमने वास्तव में इसे हरा दिया है।
हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा मैं ही अकेला था जो इसे हराने में सफल रहा।
क्या, नहीं, ये हास्यास्पद है। ड्यूक मेरी बातों से पूरी तरह प्रभावित हो गया, लेकिन उसे अभी भी मेरी बातों पर संदेह है। इसलिए अंतिम उपाय के रूप में मैंने अपने बैग से ब्लिजर्ड फीनिक्स का जादुई पत्थर, पूंछ के पंख और पंख निकाले और उन्हें ड्यूक को भेंट कर दिया। ये है, ये सबूत है, ये ब्लिजर्ड फीनिक्स का जादुई पत्थर, पूंछ का पंख और हवा का पंख है। मेरे लिए ये प्रचुर मात्रा में है, इसलिए कृपया इन्हें स्वीकार करें। फिर ड्यूक एक क्षण के लिए चुप हो गया। फिर एक लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला। आप क्या चाहते हैं? मैं एक ऐसी जगह चाहता हूं जहां मुझे पर्याप्त सैन्य सम्मान मिल सके और मैं एक उपाधि प्राप्त कर सकूं। और अगर मैं पर्याप्त रूप से सफल रहा तो मैं अनास्तासिया सामा के बगल में खड़े होने और जीवन भर अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करने का अधिकार चाहूंगा। ड्यूक ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर एक लंबी चुप्पी के बाद थूकते हुए जवाब दिया। 3 साल, मैं इतना लंबा इंतजार कर लूंगा, लेकिन मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जी हाँ सर, धन्यवाद। मैंने सिर झुकाकर उसे धन्यवाद दिया। ड्यूक ने मुझे घूरा और फिर मुझ पर थूक दिया। तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें इतनी कठोर रणभूमि में भेजने वाला हूँ कि तुम चाहोगे कि मर जाओ। उद्धरण चिन्ह ... यही तो मैं चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं दुश्मन के गढ़ में घुस जाऊंगा, चाहे वहां सिर्फ मैं ही क्यों न रहूं। अच्छा, मैंने उसे ऐसा करने के लिए चुनौती दी और ड्यूक के निवास से बाहर निकल गया। मैं अन्ना के साथ अपनी उड़ान का आनंद ले रहा हूँ। आज गर्मी की छुट्टियों के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, हम उड़ते हुए ड्रैगन की घाटी जा रहे हैं, मेरे लिए और अन्ना के लिए भी काफी समय बाद। बहुत सी बातें हुई, लेकिन अन्ना के साथ मेरा रिश्ता अब भी पहले जैसा ही है। ऐसा लगता है कि ड्यूक को पता नहीं चला कि मैंने हद पार कर दी है, और हालांकि मुझे थोड़ा अपराध बोध हो रहा है, फिर भी अब तक कोई और समस्या नहीं आई है। वैसे क्या मैंने उससे एक प्रश्न पूछने का निर्णय लिया जो मुझे कुछ समय से परेशान कर रहा था, क्योंकि जब हम अकेले होते थे तो सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग न करना हमारे लिए सामान्य बात हो गई थी। अन्ना का लहजा ऐसा क्यों है? पता नहीं, उसके शब्द सामान्य कुलीन महिला के लहजे से अलग हैं। मैंने अपने पीछे अन्ना को हौंफते हुए सुना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम ... इसलिए हम, मुझे धीमी आवाज में बताया गया, लेकिन मैं सुन नहीं पाया, इसलिए मैंने वापस पूछा। तभी कुछ अनपेक्षित शब्द मेरे कानों में पड़े। क्या एलन सामा को विनम्रता से बोलने वाली महिलाएं पसंद हैं? खैर, मैं क्या करूं? मुझे अब भी बहुत घबराहट होती है, पर अगर वो अब इसे बदल भी दे तो भी अजीब नहीं लगता। नहीं, मैं अन्ना के साथ सहज रहना चाहता हूं, और जिस तरह से वह बात करने में सहज है उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम उसी तरह बात करने में सहज हो जैसे तुम आमतौर पर बात करती हो तो कोई बात नहीं, और अगर तुम जिस तरह से बात कर रही हो उसी तरह बात करने में सहज हो तो भी कोई बात नहीं। वास्तव में अन्ना का स्वर सामान्य हो गया। आखिरकार विनम्र स्वर का मतलब यही था कि वह सतर्क है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है या कुछ और, बात बस यह है कि मैं सोच रहा था कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। ओह, यही तो है, मेरी सगाई महामहिम से हुई थी, है ना? उस समय मैं कुछ समय तक महल में प्रशिक्षु के रूप में रहा था, लेकिन किसी कारण से प्रशिक्षु होने के अलावा मुझे महामहिम के साथ एक शूरवीर के रूप में भी प्रशिक्षित किया गया था। हम, ऐसा क्यों है? हालांकि इससे मुझे अपनी तलवारबाजी की कला निखारने में मदद मिली है, और यह अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन महामहिम अपनी सेवा में लगे शूरवीरों और दासियों को जरूरी आदेश नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे सारी गंदगी साफ करनी पड़ी और उनकी ओर से आदेश देने पड़े, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मैं उनका वरिष्ठ बन चुका था और बोलने का ये तरीका मुझ में पूरी तरह समा गया था। कैसे, मुझे नहीं पता कि ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए क्या हुआ होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अन्ना का स्वर मूल रूप से उस युवराज के कारण था। हो, शायद युवराज का चरित्र इसीलिए निखारा गया क्योंकि उसे इस तरह बिगाड़ा गया था। आह, लेकिन अगर आप इस लहजे के साथ माँ बनती हैं तो यह अच्छा नहीं है, है ना? टीएल, उसने मुझे एक बहुत ही डरावनी बात बताई, लेकिन अगर अन्ना ऐसा सोचती है तो शायद ये बस एक मौका मिलने की बात है। ठीक है, तो फिर शादी के बाद हम चीजें थोड़ी बदल देंगे। जब मैंने ऐसा कहा तो अन्ना का गला भर आया और वह एक पल के लिए चुप हो गई। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पा रही, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका चेहरा चटक लाल है। तब एना ने एक छोटे से हाँ में उत्तर दिया और विषय बदल दिया। वैसे मैंने सुना है कि उड़ते ड्रैगन की घाटी एक डरावनी जगह है जहां वाइवन उड़ते रहते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सुरक्षित है? मेरा एक परिचित है, इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक है, शायद। जब मैंने यह उत्तर दिया तो अन्ना ने अपना सिर मेरी कमर पर रख दिया। मुझे आप पर विश्वास है, यह अन्ना की ओर से एक संकेत है। वाइवन हमें ब्यूटर पर देखकर थोड़े हैरान जरूर हुए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे हम पर हमला करने वाले हैं। अगर हम पर हमला होने वाला होता तो मैं पूरी कोशिश करता कि मुड़कर जमीनी रास्ते पर चला जाऊं, लेकिन लगता है कि उन्हें मेरी अच्छी याद है। जैसा कि हुआ, मैंने ब्यूटे को हवाओं के मंदिर के सामने उस चौक में उतारा जहां जेरोम पहले सो रहा था। फिर मैंने अन्ना का हाथ पकड़ा और उसे पवन मंदिर में ले गया। वे वहां थे, जेरोम और मेलिसा, अपने थोड़े या शायद बहुत ज्यादा बदले हुए रूप के साथ। उनके शल्कों और आंखों का रंग नहीं बदला था, लेकिन उनके शरीर काफी बड़े हो गए थे और वे ज्यादा निडर और शांत दिख रहे थे। लेकिन उसके पास खेल जैसा कोई बच्चा नहीं था। क्या यह एक आकाश ड्रैगन है? अरे जेरोम कुन, मेलिसा चान। अन्ना को आश्चर्य हुआ जब मैंने प्रवेश द्वार से आवाज लगाई और जेरोम दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। जेरोम, जो अब एक जोड़ी पंखों वाला विशालकाय काला आकाशीय ड्रैगन बन गया था, ने मुझे प्रणाम किया। आ आ आ एलन सान, बहुत समय हो गया। मुझे उस समय पुरानी यादों और राहत का एहसास हुआ जब मैंने जेरोम को देखा, जो अपने नए आकर्षक लुक के विपरीत अभी भी आश्चर्यजनक रूप से शांत था, लेकिन अन्ना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। ओह एलन सान, बहुत समय हो गया, क्या हुआ? क्या आपको किसी मदद की जरूरत थी? जेरोम के विपरीत मेलिसा, जो आकाश की रानी जैसी दिखने वाली एक सुंदर सफेद ड्रैगन थी, ने अपनी लंबी गर्दन हिलाई और मेरी ओर देखा। खैर, मुझे लगता है कि यह 50/50 वाली बात है। एक, मैं ये देखने आया था कि तुम कैसे हो। क्या किसी ने तुम पर हमला किया या कुछ और? हम, ओह वैसे मैंने घाटी के वाइवन से सुना है कि एक अजीब गुलाबी महिला और उसके साथियों ने कुछ समझ से परे बातें कहते हुए हम पर हमला किया। क्या कोई नुकसान हुआ? जाने कैसे, मैंने सुना कि वह बहुत कमजोर था, उसे बस पूंछ से एक झटका ही लगा। खैर, मुझे एलन सान से एक सिफारिश मिली थी, तो मैं अपने जेरी के साथ एक छोटी सी यात्रा पर गया। बहुत मजा आया। मैं समझ गया, ये जानकर अच्छा लगा। तो आपको किस चीज में मदद चाहिए? हालांकि अभी ऐसा नहीं है, मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि भविष्य में जब वह किसी संकट में होगी तो आप मेरी मदद कर सकेंगे। हम, मेलिसा अपना चेहरा अन्ना के करीब ले आए और अन्ना ने एक हल्की सी चीख मारी और मेरी बांह से लिपट गई। क्या आप ये कह रहे हैं कि यह लड़की एलन सान की चुनी हुई लड़की है? ओह ये सही है, मुझे अभी तक उसके माता पिता की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मुझे इसकी मंजूरी मिल जाए। ओह प्रिय, यह अच्छा है, मेलिसा चांद ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर जेरोम, तुम रहस्यमयी बातें कहने लगे हो। अगर यह एलन सान का अनुरोध है, मेलिसा चांद ने जेरोम को घूर कर देखा, आप इस लड़की के माता पिता या किसी को मार नहीं सकते, ठीक है? अरे अगर वे मंजूरी नहीं देते तो? ओह तुम अभी भी बेकार हो, तुम अभी पिता बनने के लिए तैयार नहीं हो, है ना? यू अन, हम, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन लगता है जेरोम कुछ समय से उसे न देख पाने के कारण बहुत कट्टर हो गया है। आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा? हालांकि ऐसा लगता है कि अब भी और अतीत में भी वह पूरी तरह से मेलिसा की पीठ पर लेटा हुआ है, इसलिए मैं किसी कारण से बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से आप अभी बात कर रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि जेरोम कुन अभी भी बच्चा है? इसके लिए मुझे आप पर दुख है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर मुझे तुम्हारी खुशबू याद रखने के लिए तुम्हें सूंघने दो। ये कहते हुए मेलिसा चान अपना चेहरा पास लाती है और अन्ना को सूंघती है। जेरोम भी अन्ना की नकल करते हुए उसे सूंघता है। हाँ मैं समझ गया, ये और कोई नहीं एलन सान का अनुरोध है, मैं आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद, ये बहुत मददगार है मेलिसा चान। फूफू, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा बीफ ला सकते हैं? मुझे लगा कि आप ऐसा कहेंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये कहते हुए मैंने अपने जादुई थैले में रखा गोमांस और ओक का मांस निकाला और मेलिसा चान को दे दिया। ओह जैसी कि एलन सान से उम्मीद थी, आप बहुत विचारशील हैं। जैसा कि कहा गया है, मेलिसा चान एक के बाद एक मांस को स्वादिष्ट तरीके से निगलती है। मेलिसा चान ने मेरी ओर देखा, जिस पर मैंने सिर हिलाया और उसने जल्दी से मेरे द्वारा दिया गया मांस खा लिया, जबकि जेरोम लालच से देख रहा था। अगर आपको यह इतना पसंद आया तो मैं और भी लाऊंगा जब भी ऐसा होगा। ओह सच में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेलिसा ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। फिर जेरोम लालच भरी नजरों से मेरी ओर देखता है। अरे जेरोम कुन, तुम ताज़ा शिकार ढूंढने और मेलिसा चान को खिलाने की पूरी कोशिश करोगे ताकि वह निश्चिंत होकर बच्चा पैदा कर सके, है ना? जब तक अंडे गर्म हो रहे होंगे तब तक आप में से कोई शिकार नहीं कर सकेगा, है ना? या फिर अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसे ठीक से कहें। ये सोचकर मैंने जेरोम के लिए तैयार किया हुआ मांस एक और जादुई थैले से निकाला और उसे दिया। जेरोम की पूंछ हमेशा की तरह हिली और उसने खुशी खुशी मांस का एक निवाला खा लिया। गर्मी की छुट्टियां अच्छी रहीं, सिवाय उस राज के जिसके बारे में अन्ना और मैं किसी को नहीं बता सकते थे। हमने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें साहसिक यात्रियों और देश के बीच के रिश्तों पर कई नजरियों से चर्चा की गई थी। इस बार भी अन्ना हमें इसमें शामिल कई लोगों की राय सुनने में मदद करेंगी, जिनमें घरेलू विशेषज्ञ और साहसी लोगों के संघ के संघ प्रमुख शामिल हैं, और उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और उत्पन्न हितों के टकराव पर रिपोर्ट देने में सक्षम होना अच्छा था। सीधे शब्दों में कहें तो देश और कुलीन वर्ग कालकोठरी से अर्जित धन को अपनी वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना चाहेंगे, लेकिन साहसी संघ इसकी अनुमति नहीं देगा क्योंकि इससे कई साहसी घाटे में चले जाएंगे। अगर देश को कालकोठरी से कमाए गए पैसे को अपनी वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना है तो उसे शूरवीरों जैसा ही व्यवहार करने वाले साहसी लोगों को नियुक्त करना होगा, लेकिन वह दुविधा में है क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मैं ज्यादा स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैं कहूँगा कि मैं उन्हें भुगतान नहीं करना चाहता क्योंकि यह पैसे की बर्बादी होगी। जैसी की उम्मीद थी, यह इस तरह से काम नहीं कर सकता। हालांकि मार्गरेट के अल्टमेंट में एक अच्छा रिश्ता स्थापित हो गया है, जहां शूरवीरों और साहसी लोगों ने ऑर्क्स के स्थिर शिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया है। मैंने अल्टमेंट के परिणामों के आधार पर साहसी लोगों के साथ एक नए रिश्ते की वकालत करते हुए इस रिपोर्ट का समापन किया है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इसे कैसे लिया जाएगा। संयोग से इस रिपोर्ट को लिखने के बाद अन्ना और मैंने साथ मिलकर विंड माउंटेन कालकोठरी पार की। इस वजह से हम बी रैंक के एडवेंचरर बनने वाले सबसे कम उम्र के एडवेंचरर थे, जो कि एक तरह से तारीफ ही है। बेशक इसके पीछे एक वजह है। हालांकि इससे ड्यूक को यह साबित हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सबसे अहम मकसद अन्ना का स्तर सुधारना था। मुझे नहीं लगता कि खेल में अब ऐसा कोई परिदृश्य है जहां अन्ना के निर्वासन के बाद ड्यूक ऑफ रैम्सलेट का पूरा परिवार गृह युद्ध में मारा जाता है और अन्ना एक डार्क नाइट के रूप में वापस आती है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के इर्द गिर्द केंद्रित दक्षिणी अभिजात वर्ग अब एकाखंड रूप में मजबूती से एकजुट हो गए हैं। बिना कारण उन्हें नुकसान पहुंचाने से निश्चित रूप से गृह युद्ध छिड़ जाएगा, और चाहे विरोधी कितना भी रैम्सलेट विरोधी क्यों न हो, वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उनका समर्थन करे। अगर हम संतुलन बनाए रखें तो हम शाही राजधानी के विनाश से बच सकते हैं। हालांकि जब तक हम तीन तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं, हम अपनी चौकसी कम नहीं कर सकते। तो दो ऐसे वरदानों के साथ जो इस दुनिया में विशेष रूप से दुर्लभ हैं, अन्ना का स्तर ऊपर उठना न केवल उसकी शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के क्षेत्र की पूरी सेना को भी मजबूत करेगा, संभवतः मनोबल। खैर, किसी आपात स्थिति में वह कहेगी कि वह लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएगी, इसलिए यह उस स्थिति के लिए बीमा का काम भी करता है। अरे हाँ, पवन पर्वत की कालकोठरी फतह करने के बाद मैंने खजाने के बारे में बात की थी। जब मैंने उसे स्काई नाइट तलवार दिखाई तो अन्ना की आंखें चमक उठी। इसलिए मैंने अन्ना को उसके आगामी जन्मदिन पर यह उपहार देने का वादा किया। ये स्काई नाइट तलवार एक पौराणिक हथियार है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे पास नाइट का आशीर्वाद नहीं है। इसके अलावा अगर मुझे कहीं से नाइट का आशीर्वाद मिल भी जाए तो मुझे पवन जादू के कौशल की जरूरत नहीं है जो ये प्रदान करता है, क्योंकि इसमें पवन देवता का आशीर्वाद है। ऐसे में अन्ना के लिए इसका इस्तेमाल करना ज्यादा उचित है। दुर्भाग्य से मैं पिछले साल अपनी स्थिति और रुतबे के कारण उसका जन्मदिन भी नहीं मना पाया था, इसलिए मैं अन्ना के जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जो सांस्कृतिक उत्सव के बाद आएगा। खैर, अन्ना ने जिद करके वह विकल्प अंगूठी उतारने से इनकार कर दिया जो मैंने उसे दी थी, और वह परी के बालों का आभूषण जो एल्विन रानी ने उसे दिया था। हालांकि अंगूठी के बारे में कई अफवाहें थी, खासकर अन्ना ने कभी नहीं बताया कि उसे यह अंगूठी किसने दी थी, और एक कुलीन महिला की तरह मुस्कुराकर टालती रही। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि मार्गरेट और इसाबेला को इसके बारे में पता था, लेकिन परी के बाल आभूषण के मामले में ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि खेल में एक चित्र था और एमी जानती थी कि वह कैसा दिखता है, इसलिए जब एमी को पता चला कि अन्ना के सिर पर परी के बालों का आभूषण है तो वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गई और हंगामा खड़ा कर दिया। अरे, तुमने वो बाल आभूषण क्यों पहना है जो मुझे मिलना चाहिए था? इसे वापस दो। नए सेमेस्टर के पहले दिन एमी ने अन्ना को उकसाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह एक अनमोल खजाना है जो मुझे एक रईस ने दिया था। ये तुम्हारा नहीं है, और चाहे कोई भी कहे, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। अन्ना ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। और आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, आपको पता चलेगा कि एमी का तर्क गलत है, लेकिन क्राउन प्रिंस ने बिना किसी सवाल के एमी की बात मान ली और अन्ना को आदेश दिया। तुम क्या कह रहे हो? ये केश आभूषण एमी के लिए है। बकवास बंद करो और केश आभूषण एमी को वापस कर दो। युवराज ऐसा कहता है और अन्ना को बाल आभूषण वापस करने का आदेश देता है। जहां तक मेरी बात है तो मैं आशा कर रहा था कि वह ठीक हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, लेकिन यह शायद सबसे अच्छा विचार नहीं होगा। महाराज, क्या आप सचमुच समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? जरूर, तो जल्दी करो और उसे वह बालों का आभूषण वापस दे दो। अन्ना समझ की कमी से घबरा गई और उसी समय लियोनार्डो ने बलपूर्वक बाल आभूषण लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी क्षण बाल के आभूषण से प्रकाश चमक उठा और लियोनार्डो उछलकर सभागार की दीवार से जा टकराए, जहां उद्घाटन समारोह अभी अभी समाप्त हुआ था। फिर अन्ना के बालों के आभूषण से अनगिनत आवाजें सुनी जा सकती हैं। उन लोगों को दंड दो जो आत्माओं द्वारा पहचाने गए लोगों से टोकन लेते हैं। सजा, दंड, दंड, दंड। टीएल, मुझे उपन्यास द वाइट कैट डेथ्स फॉर वेंजेंस वाज जस्ट लेजिंग ऑन द ड्रैगन किंग्स लैप की याद आती है। यह एक कोरस की तरह था, एक के बाद एक आवाजें और फिर और अधिक आवाजें। आत्मा के प्रिय बच्चे को कौन हानि पहुंचाता है? कौन, 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 कौन? उस समय सभागार में भगदड़ मच जाती है और छात्र झुंड में सभागार से बाहर भागने लगते हैं। एमी भयभीत भाव से अन्ना को देख रही है, जबकि युवराज और उसके मित्र अन्ना को हतप्रभ भाव से देख रहे हैं, मानो उनकी समझ अभी जागृत नहीं हुई है। मैं अन्ना के सामने खड़ा हूँ, मानो उसकी रक्षा कर रहा हूँ। महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह केश आभूषण अनास्तासिया सामा को एक कुलीन व्यक्ति ने दिया था, और जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप इसे बलपूर्वक लेने का प्रयास करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। तो क्या आप अब भी सोचते हैं कि यह एमी सामा का है? गू तसू, लेकिन उसके चेहरे के भावों से लगता है कि वह घमंडी हो रहा है। अगर ऐसा है तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? इस बीच एमी ने मुझे ऐसे घूरा जैसे वह मुझे मौत का श्राप देना चाहती हो। हाँ, ये वही है, उसी ने सब कुछ बिगाड़ा है। मुझे संत बनना होगा, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एमी भी अपने होश में है। मैंने मेलिसा से सुना है कि उड़ते ड्रैगन की घाटी में एक आम वाइवन के एक ही वार से वह उड़ गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि उसे जल्द से जल्द उसके भ्रम से निकालना बेहतर होगा। अरे कुछ तो बोलो एमी, अपने घिनौने व्यवहार से बेखबर हमसे शिकायत करती रही, लेकिन मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। एमी सामा, आप चाहे जो भी कहें, ये केश आभूषण अनास्तासिया सामा का है। कृपया अब जाग जाए, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। कृपया उन लोगों को देखिए जो अभी आपके सामने जी रहे हैं। इस दुनिया में कोई नायिकाएं नहीं हैं। अनास्तासिया सामा, महामहिम मार्कस सामा, ऑस्कर सामा, लियोनार्डो सामा और यहाँ तक कि एमी सामा भी ऐसे पात्र नहीं हैं जो परिदृश्य के अनुसार चलते हैं। वे सभी इंसान हैं और उनसे परे भी कई और लोग हैं, आप जानते हैं। ये खेल की दुनिया नहीं है और आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो खेल को जानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। एक पूर्व जापानी के रूप में यदि आपके पास थोड़ी भी सामान्य समझ है तो आपको ये बात समझनी चाहिए। एमी, जो मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ समझ गई थी, ने अपनी आंखें चौड़ी की और सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे सभागार से बाहर चली गई। उस समय मुझे लगा था कि इससे एमी दखलंदाजी करना बंद कर देगी। मुझे यकीन था कि वह इस पर जरूर विचार करेगी, हालांकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह केवल इच्छाधारी सोच थी।